हर कोई गलत है। चिंपैंजी मांस और फल खाते हैं और शहद के लिए मर जाते हैं।
मैंने यह नहीं सुना। मैंने इसे चिंपांजी के बारे में एक प्रकृति फिल्म में देखा और फिर मैंने जाकर पढ़ा कि यह वास्तव में उनका आहार है।
हॉक लॉ यहाँ पूरी तरह से काम करता है।
हाँ, हर कोई गलत है।
मेरे अलग अलग निष्कर्ष हैं, लेकिन अली और परिवार के लिए उन्होंने पागलों की तरह काम किया।
यदि आप जानना चाहते हैं कि सब्जियां बेकार क्यों हैं, तो शांत हो जाइए और अंत तक पढ़िए या सुनिए।
एक करीबी दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं 120 साल तक जीवित रह सकता हूँ, लेकिन वह आज मुझे बहुत अधिक आनंद देता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि इस झगड़े ने मुझे परेशान कर दिया। मैं मानता हूँ
उसे यह बात समझ में नहीं आई।
विचार 120 वर्ष की उम्र तक जीवित रहने का नहीं है, विचार हर समय अच्छा महसूस करने का है, चरम ऊर्जा और एकाग्रता का है। डॉक्टरों के बिना या पश्चिमी आहार के कारण हम पर हावी होने वाले किसी भी बोझ के बिना आज ही खुद को खोखला महसूस करने का है। ऐसा नहीं उम्र 90 और हर कोई गलत क्यों है,
क्योंकि उपयुक्त आहार तक पहुंचने का एक ही तरीका है और वह है विकासवाद और मानव विज्ञान के माध्यम से तर्क का व्यापक उपयोग, यानी स्वतंत्र विचार।
ये रास्ता चुनने की बात है, समझदारी की नहीं।
जो कुछ भी हमने सुना या जिसके साथ हम बड़े हुए उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए।
ये बहुत कठिन है और बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं।
मेरे लिए यह आसान है क्योंकि मेरे लिए स्वतंत्र रूप से सोचना स्वाभाविक है।
केवल जीव विज्ञान या विज्ञान के माध्यम से पोषण को समझना एक गतिरोध की ओर ले जाता है।
कुछ साल पहले पोषण के बारे में केंद्रित और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना मुश्किल था। आज गूगल, चैट जीपीटी, ऑडिबल और अमेज़न पुस्तकों की मदद से यह संभव है।
अधिकांश आहारों में सुधार दिखता है क्योंकि वे प्रसंस्कृत भोजन को हटा देते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है।
समस्या यह है कि हम जो भोजन खाते हैं उससे पुनः पोषण कभी कभी दशकों तक होता है, और फिर यह समझना मुश्किल होता है कि इसका कारण क्या है। यह विषाक्तता बहुत धीमी है।
तर्क से बच निकलने वाला बड़ा आश्चर्य यह है कि विषाक्त पदार्थ मुख्य रूप से सब्जियों, जड़ों, पत्तियों, अनाज, बीजों, सब्जियों और बीजों में पाए जाते हैं, लेकिन कच्चे फलों में भी पाए जाते हैं या मनुष्यों के लिए उपयुक्त प्रकार के नहीं होते हैं।
पौधे नहीं चाहते कि हम उन्हें खाएं। वे उन जानवरों से अलग हैं जो दौड़ सकते हैं। इसे रोकने का उनका तरीका जहर है।
अधिकांश विषाक्त पदार्थ त्वचा, गुठली और बीजों में पाए जाते हैं, इसलिए फलों और सब्जियों के बीज चबाने से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।
फल चाहता है कि आप इसे खाएं, लेकिन बीजों को चबाकर नष्ट न करें। उदाहरण के लिए बादाम चबाने से कुछ साइनाइड निकलता है।
पौधा साइनाइड को निष्क्रिय रूप में संग्रहित करता है, जिसे साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड कहा जाता है, जो मूल रूप से एक चीनी अणु है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्डर के माध्यम से साइनाइड समूह जुड़ा होता है।
इस ग्लाइकोसाइड को इसे सक्रिय करने वाले एंजाइम से अलग एक डिब्बे में संग्रहित किया जाता है।
जब कोई कीट या अन्य जानवर पौधे को चबाता है तो कोशिकाएं कुचल जाती हैं और दोनों रसायन मिल जाते हैं।
फिर एंजाइम चीनी से साइनाइड को अलग कर देता है, जिससे जहरीला यौगिक निकल जाता है।
ये प्रक्रिया चमकने वाली छड़ी को तोड़कर उसमें चमक लाने वाले रसायनों को मिलाने के समान है।
इसलिए बीजों के प्रकार के अनुसार ये समझना संभव है कि फल के प्रकार ने विकास के माध्यम से किन जानवरों के लिए खुद को अनुकूलित किया है।
ब्लूबेरी आदि के बीज, जो छोटे बीज होते हैं, स्पष्ट रूप से पक्षियों के लिए होते हैं, क्योंकि मनुष्य उन्हें चबाते हैं, बीज नष्ट हो जाते हैं, और इससे ये स्पष्ट है कि एवोकाडो हमारे लिए अच्छे हैं क्योंकि उनके बीज बड़े होते हैं और त्वचा स्पष्ट है, और फिर आप इन्हें खाने से आसानी से बच सकते हैं।
अधिकांश लोग एक चयापचय रोग से पीड़ित हैं, जिसे कम से कम एक वर्ष के लिए मुफ्त आहार पर स्विच करके ठीक किया जा सकता है।
संवेदनशीलता जैसी कोई चीज नहीं है।
मेरी समझ में उछाल तब आया जब मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें कहा गया था कि सीलिएक रोगियों की संख्या दुनिया में इसकी मात्रा बढ़ रही है।
सीलिएक रोगियों में ग्लूटेन युक्त उत्पाद खाने पर गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं।
ग्लूटेन गेहूं परिवार का एक विष है, जिसे विभिन्न कीड़ों और कीटों को गेहूं के बीज खाने से रोकना चाहिए।
जो बात मुझे अतार्किक लगती थी वो ये कि मानवता अचानक एक निश्चित तत्व के लिए एक समस्या विकसित कर लेती है। इसका कोई संभाव्य और विकासवादी अर्थ नहीं बनता है।
कुछ बदलना होगा। सचमुच कुछ बदल गया है। सबसे पहले बड़ी बीज कंपनियों ने प्रजनन और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से गेहूं के बीज में ग्लूटेन की मात्रा बढ़ा दी, और इस प्रकार खेत में किसानों की उत्पादकता बढ़ गई क्योंकि कम कीटों ने गेहूं को नुकसान पहुंचाया।
दरअसल 1970 के दशक से हमने देखा है प्रति एकड़ अनाज की उपज में 3 गुना से अधिक की वृद्धि।
हालांकि यह केवल ग्लूटेन में वृद्धि के कारण नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा प्रभाव है जो सीलिएक रोग में वृद्धि को अच्छी तरह से समझाता है।
दूसरे की खपत गेहूं के उत्पादों में भी वृद्धि हो रही है, और आज हम कई लोगों को नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में गेहूं के उत्पाद खाते हुए देखते हैं।
गेहूं के उत्पादों में ब्रेड, पास्ता, पेस्ट्री आदि शामिल हैं।
स्वतंत्र विचार तब आया जब यह मुझे तर्कसंगत नहीं लगा कि लोगों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील है। सीलिएक रोगी आबादी का 1% है और अन्य 10% जिन्हें ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील के रूप में परिभाषित किया गया है। मुझे इसकी अधिक संभावना प्रतीत होगी कि ग्लूटेन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनमें गंभीर लक्षण हैं और कुछ के लिए कोई लक्षण नहीं है। जैसे जैसे मैंने इसके बारे में और अधिक पढ़ा, ये सब एक साथ आ गया। मुझे पता चला कि ग्लूटेन गेहूं का एक विष है और किण्वन से ग्लूटेन की मात्रा कम हो जाती है। मुझे याद आया कि मैंने आपकी किताब में पढ़ा था कि पेशाच पर आप खमीर नहीं खाते हैं, जिसका मतलब है कि पूरे साल गेहूं को छोड़ दिया जाता है, जिसका मतलब है कि विषाक्त पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है। एक अच्छा कारण है कि वे पूरे वर्ष गेहूं नहीं खा सके, यह कोई धार्मिक समारोह नहीं था। उन्हें शायद एहसास हुआ कि इस तरह उनके पेट में दर्द नहीं होता। और फिर विज्ञान, तर्क और विकासवादी कारण सभी एक साथ आ गए। ग्लूटेन संवेदनशीलता जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ग्लूटेन किसी के लिए अच्छा नहीं है, भले ही अलग अलग डिग्री में हो। मुझे याद आया जब मैं कैरिबियन के एक द्वीप कुराकाओ में था, और द्वीप पर सभी स्थानीय लोग विशाल लोग थे, जो कि भारी के लिए एक हल्का शब्द है। इसका कारण यह है कि वे श्वेत व्यक्ति की तुलना में कुछ वर्षों तक गेहूं और वनस्पति तेल के संपर्क में रहे, और इसलिए वे पश्चिमी आहार के प्रति श्वेत व्यक्ति की तुलना में अधिक कठोर प्रतिक्रिया करते हैं। श्वेत व्यक्ति को इस आहार के लिए एक प्रकार के प्राकृतिक चयन से गुजरना पड़ा। अब कोई भी सोच में एक कदम आगे बढ़ सकता है और अपवादों के साथ सामान्यीकरण कर सकता है। जो खाद्य पदार्थ कुछ लोगों में संवेदनशीलता पैदा करते हैं, वे हर किसी के लिए विषाक्त होने की बहुत संभावना रखते हैं, लेकिन इस हद तक कि वे शायद ही कभी देखे जाते हैं, लेकिन वर्षों के दौरान वे मानवता को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और यह बिल्कुल अपने सर्वोत्तम रूप में स्वतंत्र विचार है। यह उन खाद्य पदार्थों की सूची है जिनके प्रति बहुत से लोग संवेदनशील हैं और किसी के लिए भी अच्छे नहीं हैं। गेहूं, वनस्पति तेल, दिल की जलन, मूंगफली, गाय का दूध, पेट दर्द, औद्योगिक अंडे, चीनी, मधुमेह रोगी और क्रोहन और कोलाइटिस, मेरी राय में भोजन के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि के अन्य लक्षण हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मुफ्त आहार में बदलाव से ये रोग गायब हो जाएंगे, और यह मेरा दावा है। ब्रेड, खमीरयुक्त और गेहूं नहीं, मानव हृदय जानबूझकर दावत करेगा। मैं इस बात से शुरू करता हूं कि क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि प्रतिक्रिया आमतौर पर होती है, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम अपने उपनिवेशों से रोटी लाओगे, खमीर तुम बदलोगे, और वो अध्याय 23 पढ़ेगा। और लोग अपना आटा खमीर होने से पहले ले गए, उनमें से बाकी लोगों की पोशाक में उनके कंधों पर एक गांठ थी, निर्गमन अध्याय 12, रोटी उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि वे उन पर आटा लगाकर चले गए। मैं किसी धार्मिक खंड में नहीं लिख रहा हूँ, ये दिखाने के लिए है कि यह कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था और आज हर कोई इसके बारे में भूल गया है। जैविक रूप से किण्वन अनाज में मौजूद विषाक्त पदार्थों को तोड़ता है ताकि कीटों को उन्हें खाने से रोका जा सके। ये विषाक्त पदार्थ मनुष्यों पर वर्षों तक कार्य करते हैं जब तक कि बीमारियां प्रकट न हो जाएं। रोटी पकाने और खट्टे आटे के उपयोग का सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य उत्तर पूर्वी जॉर्डन में पाया जाता है और हमारे समय से 16,000 साल पहले का है, यानी गेहूं संस्कृति से लगभग 4,000 साल पहले। इन ब्रेड का आटा मुख्य रूप से जंगली गेहूं से बना था। टैफ ब्रेड, पीटा ब्रेड बनाने के लिए सबसे अधिक अनुशंसित अनाज। जैसा कि इथियोपिया के लोग आज भी पकाते हैं और अतीत में भी पकाते रहे हैं, केवल पानी में मैरिनेट करके। इसे खुद बनाना बहुत आसान है, इथियोपियाई सिर्फ एक सुंदर लोग नहीं है। आटा और पानी सिर्फ 2 दिन के लिए ही बाहर रखें। 2 दिन के बाद आप इसकी रोजाना ताजी रोटी बना सकते हैं। 180 डिग्री पर 25 मिनट तक गर्म करने की आवश्यकता है। खट्टे आटे में आटा मिलाते समय आटे के किण्वित होने के लिए 1 दिन तक इंतजार करना बेहतर होता है। आपको हमेशा आटे का एक हिस्सा खमीरयुक्त छोड़ देना चाहिए और फिर नए आटे के साथ खमीर बनाने की क्रिया जल्दी हो जाती है। टैफ एक छोटा दाना है। जब मैं स्वतंत्र विचार करता हूं, तो यह अधिक समझ में आता है कि जिन बीजों में बड़ी मात्रा होती है वे बड़े बीजों की तुलना में कम जहरीले होंगे, क्योंकि जब लाखों व्यक्ति होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने की अपेक्षाकृत कम संभावना होती है। इसलिए उदाहरण के लिए गेहूं के एक बड़े दाने की तरह सभी अनाजों को जहर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे मछली के अंडों में देखते हैं, एक अंडे के जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन उनमें से हजारों होते हैं, और हालांकि अंडा बहुत कमजोर होता है, मछली के अंडों की भारी मात्रा के कारण संवर्धन संभव है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह एक जुआ है और कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। प्रकृति की अधिकांश चीजों की तरह भोजन के लिए अनाज का उपयोग धीरे धीरे होता था। यह अध्ययन बताता है कि अनाज को भिगोकर रखना क्यों महत्वपूर्ण है। वर्तनी, जौ, राई सभी गेहूं के समान है और पिछले कुछ वर्षों में उनमें हुए आनुवंशिक परिवर्तनों के साथ साथ उनमें मौजूद ग्लूटेन और एग्लूटिनिन जैसे विषाक्त पदार्थों के कारण बहुत समस्याग्रस्त हैं, जो जानवरों को गेहूं के दानों को खाने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मनुष्य ने ब्रेड के अनुकूल होने के लिए चयन विकास से गुजरा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये ब्रेड हमें धीरे धीरे मारती है, खासकर जब आप उन्हें याद नहीं करते हैं और हमें बड़ी उम्र में मार देते हैं, इसलिए कोई विकासवादी अनुकूलन नहीं होता है। अतीत की रोटियां खमीरी होती थीं, हम इसे यहूदी परंपरा के अनुसार भी जानते हैं, क्योंकि फसह के दिन वे खमीर नहीं खाते हैं, और इससे हम काफी सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उन्होंने वर्ष के बाकी दिनों में खमीर खाया था और उन्होंने नहीं खाया स्वाद के कारण खमीर, लेकिन यह आसानी से पच जाएगा। धूम्रपान की तरह यह मारने के लिए जाना जाता है और लोग हजारों वर्षों से धूम्रपान कर रहे हैं, तंबाकू और इसी तरह, लेकिन धूम्रपान अपेक्षाकृत अधिक उम्र में मारता है, इसलिए वास्तव में कोई विकासवादी चयन बल नहीं है। अनाज के साथ समस्या यह है कि वे पौधों से बने होते हैं और इसलिए उनमें विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कीटों को उन्हें खाने से रोकते हैं। ये विषाक्त पदार्थ कई ऑटोइम्यून बीमारियों का कारण बनते हैं। अम्लीकरण विषाक्त पदार्थों के एक बड़े हिस्से को निष्क्रिय कर देता है। ध्यान दें कि सुपरमार्केट में लगभग कोई खट्टी ब्रेड नहीं है, दुर्भाग्य से। अनाज में स्वाभाविक रूप से विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कीटों को खाने से रोकते हैं। आनुवंशिक और मैनुअल सुधार विषाक्त पदार्थों को तीव्र करता है, क्योंकि विषाक्त पदार्थ बीज कंपनियों के लक्ष्य में मदद करते हैं प्रति एकड़ अधिक उपज, क्योंकि जब इसमें बहुत अधिक विषाक्त पदार्थ होते हैं तो कीट गेहूं को नहीं खाते हैं। सभी गेहूं उत्पादों से पूरी तरह से बचने की सिफारिश की जाती है। गेहूं है एग्लूटिनिन और ग्लूटेन जैसे विषाक्त पदार्थों के साथ फूटना और उनके द्वारा किए गए आनुवंशिक सुधार के कारण भी। ब्रेड, पास्ता, स्नैक्स आदि से पूरी तरह परहेज करना ही बेहतर है। गेहूं के उत्पादों से पूरी तरह परहेज करने के कारण टैफ को तैयार करना और खमीर उठाना बहुत आसान है और स्वादिष्ट भी है। खेत में उपज की मात्रा बढ़ाने के लिए गेहूं में आनुवंशिक संशोधन और नियमित सुधार किया गया है। व्यवहार में उन्होंने गेहूं में प्राकृतिक विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ा दी, वही विषाक्त पदार्थ जो कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन मनुष्यों को भी जहर देते हैं। गेहूं में ग्लूटेन, विष, सभी मनुष्यों के आंतों के कार्य को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन विशेष रूप से सीलिएक रोगियों में। गेहूं में पदार्थ, विषाक्त पदार्थ, जो शरीर के शर्करा विनियमन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। गेहूं में ऐसे पदार्थ जो भूख की भावना को नुकसान पहुंचाते हैं और चयापचय को नुकसान पहुंचाते हैं। सामान्य रोटी जो आप खरीदते हैं, आटा अम्लीकृत नहीं किया गया है, वनस्पति तेल जोड़ा गया है जो गेहूं के समान ही जहरीला है, चीनी, नमक, और कभी कभी हम गेहूं में ग्लूटेन, लेक्टिन नामक एक विष मिलाकर पाप करते हैं। ये विषाक्त पदार्थ शरीर के वसा भंडारण तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि मवेशियों को मोटा करने के लिए गेहूं और अनाज दिया जाता है। थोड़े से फ्रुक्टोज के साथ पके फल, हाँ एवोकाडो, हाँ खुबानी, हाँ क्लेमेंटाइन, हाँ केले, हाँ केला, पका हुआ, हाँ हम मीठे की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए नहीं कि यह कैलोरी से भरपूर होता है जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, क्योंकि वसा में वास्तव में अधिक कैलोरी होती है चीनी की तुलना में, बल्कि प्रकृति में मिठास गैर विषाक्तता का प्रतीक है। फल पकने के बाद ही मीठे हो जाते हैं, जो दर्शाता है कि वे खाने के लिए सुरक्षित हैं। हालांकि ऐसे फलों का चयन करना महत्वपूर्ण है जो विषाक्त पदार्थों को बेअसर करते हैं और मिठास पैदा करते हैं। बहुत अधिक फ्रुक्टोज वाले फल क्यों? आधुनिक पालतू फलों में फ्रुक्टोज की मात्रा आमतौर पर उनके जंगली समकक्षों की तुलना में अधिक होती है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जंगली फलों के लिए अनुकूलित होता है। ये कई कारकों के कारण होता है। जोड़ चयनात्मक प्रजनन, पीढ़ियों से मनुष्य बड़े, मीठे और स्वादिष्ट होने के लिए फलों का चयन करते रहे हैं। इससे उनके जंगली पूर्वजों की तुलना में कई खेती वाले फलों में फ्रुक्टोज सहित चीनी सामग्री में वृद्धि हुई है। जोड़ खेती के तरीके, आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे कि उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई के उपयोग ने अधिक सुसंगत और प्रचुर मात्रा में खेती की अनुमति दी है फल उत्पादन। ये प्रथाएं फल के आकार और फ्रुक्टोज सहित चीनी सामग्री में वृद्धि में योगदान कर सकती हैं। जोड़ आनुवंशिक संशोधन, कुछ मामलों में फल को विशिष्ट विशेषताओं जैसे मिठास या आकार में सुधार करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है। इससे आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्मों में उनके जंगली रिश्तेदारों की तुलना में फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक हो सकती है। जोड़ पकना और भंडारण, फलों को अक्सर तब तोड़ लिया जाता है जब वे पूरी तरह से पके नहीं होते हैं और फिर परिवहन या भंडारण के दौरान पकते हैं। इससे पौधे पर प्राकृतिक रूप से पकने वाले फलों की तुलना में उच्च फ्रुक्टोज स्तर सहित एक अलग चीनी प्रोफाइल हो सकती है। सैकड़ों हजारों वर्षों के विकास में हम कम फ्रुक्टोज के संपर्क में थे, इसलिए समस्या थी। दही और किण्वित दूध उत्पादों में आंतों के बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रुक्टोज को तोड़ने में भी मदद करते हैं,
इसलिए उन लोगों को इनके साथ फल खाने की सलाह दी जाती है जो फ्रुक्टोज पाचन समस्या से पीड़ित हैं। बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस फल पकने के बाद ही मीठे होते हैं, यह इंगित करने के लिए कि वे विषाक्त नहीं हैं। फलों में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करती है और मिठास पैदा करती है। प्रत्येक फल ने कैद से पहले खुद को एक विशिष्ट जानवर या कई जानवरों के लिए अनुकूलित कर लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि फल हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं और कब। विशिष्ट पके फल का विज्ञान मनुष्यों और वानरों के लिए सबसे पुराना भोजन है। मनुष्य फल और फ्रुक्टोज के अन्य स्रोतों सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपभोग और पचाने में सक्षम होने के लिए विकसित हुआ है। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि समय के साथ मानव आहार और पर्यावरण में काफी बदलाव आया है और आधुनिक आहार में हमारे पूर्वजों द्वारा खाए जाने वाले फ्रुक्टोज का स्तर बहुत अधिक होता है। फलों में फ्रुक्टोज होता है और विज्ञान से पता चलता है, तर्क के विपरीत, कि फ्रुक्टोज की उच्च सांद्रता हमारे लिए स्वस्थ नहीं है। इसमें प्रोक्टोरिन या अवशोषण सहायक GLUT5 नामक एक एंजाइम होता है जो कुछ लोगों में वर्षों से कम उत्पादित होता है और पाचन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कई फलों की समस्याएं फ्रुक्टोज और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों पर कई अध्ययन हुए हैं। यहां कुछ प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं। फ्रुक्टोज की अत्यधिक खपत, विशेष रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में अतिरिक्त शर्करा के रूप में, मोटापे, टाइप 2 मधुमेह और अन्य चयापचय संबंधी विकारों के बढ़ते जोखिम से जुड़ी हुई है। फ्रुक्टोज को ग्लूकोज की तुलना में अलग तरह से चयापचय किया जाता है और इससे इंसुलिन प्रतिरोध और रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि हो सकती है, खासकर जब बड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि फ्रुक्टोज के सेवन से गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग NAFLD का खतरा बढ़ सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें लीवर में वसा जमा हो जाती है और लीवर को नुकसान हो सकता है। फ्रुक्टोज के उच्च स्तर के सेवन से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ जाता है जो पुरानी बीमारियों के विकास में योगदान कर सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि साबुत फलों के रूप में फ्रुक्टोज का सेवन अतिरिक्त शर्करा के रूप में लेने की तुलना में कम हानिकारक हो सकता है, क्योंकि साबुत फलों में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व फ्रुक्टोज के कुछ नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं। यदि हम पर्याप्त मात्रा में फल खाएंगे तो प्रकृति में मौजूद फल हमें मार डालेंगे। मनुष्य के खाने के लिए उपयुक्त फल प्रकृति में मौजूद फलों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आम गलती तब होती है जब आप सुपरमार्केट में पका हुआ फल देखते हैं, लेकिन इसका स्वाद केवल इसलिए अच्छा होता है और यह अच्छा दिखता है क्योंकि इसे कच्चे पेड़ से तोड़ा गया था और एथिलीन गैस या किसी अन्य अप्राकृतिक तरीके से पकाया गया था। पके और थोड़े सड़े हुए फल हमारे लिए उन परिपूर्ण फलों की तुलना में बेहतर हैं जिन्हें विभिन्न कीटों ने नहीं खाया था और जिन्हें कच्चा तोड़ लिया गया था। कच्चे में विषाक्त पदार्थ मुख्य रूप से छिलके और बीज में अपेंडिक्स की सूजन और कई अन्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। उन्हें पकने से पहले फल खाने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि अन्यथा पेड़ प्रजनन नहीं करेगा। जब बीज अंदर होगा फल उपजाऊ है। फल एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया के बाद पका है। फल जिन्हें तब तोड़ना चाहिए जब वे अपेक्षाकृत पके हों और इसलिए सुरक्षित हों, ब्लूबेरी, जंगली स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, एवोकाडो, अनानास, संतरे, क्लेमेंटाइन, नींबू, लाल अंगूर। क्लाइमेक्टेरिक वे फल जो आमतौर पर एथिलीन गैस से पकाए जाते हैं और इसलिए इनसे परहेज करने की सलाह दी जाती है, जब तक कि पेड़ से पका हुआ न उठाया जाए। तरबूज, तरबूज, आम, आड़ू, अंजीर, बेर, कीवी, केला, लीची और अन्य कच्चे फलों में गर्म करने और पकाने से विषाक्त पदार्थ कम हो जाएंगे लेकिन बढ़ेंगे नहीं। फलों के छिलके न खाने और बीजों को न चबाने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें कि फलों के बीजों का स्वाद कड़वा होता है क्योंकि वे हमारे लिए जहरीले होते हैं। ऐसे फल जो बीज को पहचानते हैं और उन्हें चबाते नहीं हैं, उनकी सिफारिश की जाती है। पका हुआ या पका हुआ केला, एवोकाडोज, उन्हें पहले पका होना चाहिए। अधिक पके फलों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। यही कारण है कि मनुष्यों में पके फलों के उपोत्पाद अल्कोहल को तोड़ने की क्षमता विकसित हुई। इससे ये भी पता चलता है कि हम पके और थोड़े सड़े हुए फल भी खाने के आदि हो चुके हैं। निचली पंक्ति मनुष्य सड़ने की प्रवृत्ति वाले मीठे पके फल खाने के लिए अनुकूलित हैं, सुंदर कच्चे फलों के ठीक विपरीत जो हम सुपरमार्केट में बेचते हैं। शहद, हाँ, असंसाधित शहद दूध की तरह मधुमक्खियों द्वारा उपभोग के लिए है और इसमें विषाक्त पदार्थ नहीं होते हैं। प्राचीन काल से ही इसका उपयोग घावों को ठीक करने के लिए किया जाता था। मेरे अनुभव में यह आयोडीन से बेहतर काम करता है। अच्छी बात है, फूल चाहते हैं कि मधुमक्खियां उनसे रस लें और इस तरह पौधे को परागित करें। ऐसा तब होता है जब फूल परागण करना चाहता है और मधुमक्खी उस समय को पहचान लेती है जब रस गैर विषैला होता है। आपको बस सावधान रहना होगा क्योंकि इसमें बहुत अधिक फ्रुक्टोज होता है। अंडे, हाँ, और मैं निम्नलिखित कारणों से चिकन अंडे से पूरी तरह से परहेज करूंगा। जब तक कि चिकन कीड़े नहीं खाता है और इसका प्राकृतिक भोजन मुक्त श्रेणी का है। अंडे कई लोगों में अलग अलग लक्षण पैदा करते हैं और संवेदनशीलता। आमतौर पर इसका एक कारण होता है, मुर्गियां वो खाना नहीं खाती हैं जो उन्हें खाना चाहिए और वे वहां नहीं हैं जहां उन्हें रहना चाहिए। यह निश्चित रूप से अंडों की गुणवत्ता में परिलक्षित होता है। दुनिया में सभी औद्योगिक भोजन संभवतः मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अंडे भी सूची में हैं। बहुत सारे अंडे देने के लिए मुर्गियों के प्रजनन की प्रक्रिया में अंडों में मौजूद सामग्री भी बदल गया, इसलिए मनुष्य इसके संपर्क में नहीं आए। कीटों को खाने से रोकने के लिए गेहूं के साथ भी ऐसी ही प्रक्रिया हुई। मैंने वैज्ञानिक रूप से परीक्षण नहीं किया है, लेकिन मैंने देखा है कि मुर्गियां गंदगी, बीमारियों और गंभीर चोटों की कठोर कैद की स्थिति में रहती हैं। ये संभव है कि अंडे का छिलका सीलबंद न हो और वो जहरीले पदार्थों को अपने अंदर सोख ले। इसके अलावा रुग्णता को रोकने के लिए मुर्गियों को नियमित आधार पर बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। डेयरी उत्पाद, हाँ, केवल बकरियों से, केवल बकरी के डेयरी उत्पाद और अधिमानतः अम्लीकृत, किण्वित या वृद्ध दही, मक्खन, चीज और कैफिर। दूध को अम्लीकृत करने से यह मनुष्यों के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है। पौधों के विपरीत, दूध उपभोग के लिए है लेकिन मनुष्यों के लिए नहीं। वहीं तर्क कहता है कि यह मनुष्यों के लिए उपयुक्त है। दूध को किण्वित करने से यह कई मायनों में मनुष्यों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। इसके कुछ कारण यहां दिए गए हैं। एक, पाचन में सुधार। किण्वित दूध में प्रोबायोटिक्स नामक लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को तोड़ने और पाचन को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो लैक्टोज असहिष्णु हैं, क्योंकि वे स्वयं लैक्टोज को पचाने में असमर्थ हैं। दो, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। किण्वन से दूध में कुछ पोषक तत्वों जैसे विटामिन B12 और फोलेट की उपलब्धता बढ़ सकती है। ये पोषक तत्व समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तीन, कम लैक्टोज सामग्री। किण्वन प्रक्रिया दूध की लैक्टोज सामग्री को भी कम कर देती है, जिसे ये लैक्टोज असहिष्णुता वाले लोगों के लिए अधिक सहनीय हो जाता है। स्वाद और बनावट में सुधार। किण्वित डेयरी उत्पाद जैसे दही और कैफिर में अक्सर तीखा, मलाईदार स्वाद और बनावट होती है जिसका कई लोग आनंद लेते हैं। कुल मिलाकर दूध को किण्वित करने से यह अधिक पौष्टिक, पचाने में आसान और उपभोग करने में अधिक आनंददायक हो सकता है। गाय के दूध के उत्पादों से पूरी तरह बचना बेहतर है। यह महत्वपूर्ण है कि दूध उत्पाद प्राकृतिक चरागाहों से आए, न कि उस तरह के मिश्रण से जो जानवरों को पिंजरों में मिलता है। सभी गाय के दूध उत्पादों पर एक्स के कारण, इसमें बड़ी मात्रा में बीटा कैसिन ए एक प्रोटीन होता है। मनुष्यों ने विकास के अधिकांश वर्षों में बीटा कैसिन ए 2 खाया। बीटा कैसोमोफिन 7 BCM7 एक पेप्टाइड है जो पाचन तंत्र में ए एक बीटा कैसिन के पचने पर उत्पन्न होता है। BCM7 में ओपियोइड जैसे प्रभाव देखे गए हैं, जिसका अर्थ है कि यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में ओपियोइड रिसेप्टर्स को बांध सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि BCM7 विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा, सूजन, तंत्रिका संबंधी विकार और हृदय रोग। ये ध्यान देने योग्य है कि BCM7A2 बीटा कैसिन में मौजूद नहीं है। यही कारण है कि कुछ लोग पारंपरिक गाय के दूध के विकल्प के रूप में A2 दूध का सेवन करना चुन सकते हैं जिसमें A1 और A2 बीटा कैसिन होता है। गाय का दूध पूरी तरह से औद्योगिकीकृत है। सभी औद्योगिकीकृत खाद्य पदार्थ, सोया, गेहूं, मक्का, जई, गाय का दूध, अंडे, अनुसंधान और तार्किक रूप से हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ये संभाव्य स्तर पर है। एक गाय को बहुत सारा दूध देने के लिए ऐसा भोजन मिलता है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है और साथ ही अपमानजनक परिस्थितियों में पली बड़ी है। एक अध्ययन में मासाई जनजाति की तुलना की गई जो मांस और गाय का दूध खाती थी, उसकी तुलना एक ऐसी ही जनजाति से की गई जो शाकाहारी थी। सब्जियां और पत्तियां। सब्जियों और पत्तियों को विषाक्त पदार्थों और अवशोषण विरोधी खनिजों से घात लगाना बेहतर होता है और ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अधिकांश सब्जियां कड़वी या खट्टी होती हैं, इसलिए वे हमें और अन्य जानवरों को उन्हें न खाने का संकेत देती हैं। यदि आप सब्जियां खाने पर जोर देते हैं तो वास्तव में अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। ये सोचकर सब्जियां खाने का कोई मतलब नहीं है कि वे हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं, सच इसका विपरीत है। स्वस्थ भोजन जैसी कोई चीज नहीं है, हमारे लिए उपयुक्त भोजन है और सब्जियां और पत्तियां केवल भोजन की कमी के दौरान मानव आहार का हिस्सा थी, स्वतंत्र पसंद से नहीं। वे सब्जियां जिनसे परहेज करना सबसे अच्छा है, खीरा, आलू, मक्का, टमाटर, बैंगन, काली मिर्च, कद्दू और तोरी। भाप में पकाना बेहतर है। सब्जियों और पत्तियों के बारे में एक लेख। सब्जियों और पत्तियों से परहेज करने के कारण प्राचीन वर्षों में मनुष्य शायद ही सब्जियां और पत्तियां खाते थे, इन्हें औषधीय प्रयोजनों के लिए या जब कोई विकल्प नहीं था। सब्जियां कड़वी या खट्टी होती हैं और यह है विषाक्तता का एक प्राकृतिक संकेत। पौधों में कई प्रकार के विषाक्त पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व अवरोधक, लेक्टिन, ऑक्सीलेट, टैनिन, प्रोटीज अवरोधक, फाइटिक एसिड, साइनाइड, हार्मोन अवरोधक। पौधे आपको मारना चाहते हैं। पौधे बाकी लोगों की तरह भाग नहीं सकते जानवरों को, इसलिए उन्होंने मुख्य रूप से विषाक्त पदार्थों को खाने से रोकने के लिए एक तंत्र विकसित किया और यह बचाव का मुख्य तरीका है। विज्ञान और तर्क दोनों ही इसे दर्शाते हैं। पौधों का रक्षा तंत्र मनुष्यों को उन्हें खाने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि छोटे कीड़ों और जानवरों द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इन विषाक्त पदार्थों का प्रभाव अक्सर इतना धीमा होता है कि यह भोजन मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। खाना पकाना और गर्म करना, एक ऐसा तंत्र जिसका पौधों ने विकास के दौरान सामना नहीं किया है, विषाक्त पदार्थों के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देता है, लेकिन सभी को नहीं। सभी पोषक तत्व मांस, मछली, दूध और कुछ फलों में पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये वे पोषक तत्व हैं जिन पर हम बने हैं। पौधों में खनिज और विटामिन मांस और मछली की तुलना में कम अच्छी तरह से अवशोषित होते हैं। उदाहरण के लिए, मांस स्रोत हेम आयरन से प्राप्त आयरन, पौधे स्रोत नॉन हेम से प्राप्त आयरन की तुलना में बहुत बेहतर अवशोषित होता है। लोहे के बारे में स्पष्टीकरण, अधिकांश पौधे अधिकांश जानवरों को मार देंगे। पौधों का एक छोटा सा हिस्सा जानवरों के एक छोटे से हिस्से द्वारा खाया जाता है। कोआ को नीलगिरी का पत्ता खाना चाहिए और उसके विषाक्त पदार्थों को बेअसर करना चाहिए। कोई भी अन्य आहार कोआ को मार देगा और जिस पेड़ की पत्तियां वो खाता है वह हमारे सहित बाकी जानवरों को जहर दे देगा। हमें पौधों को दवा की तरह देखने की जरूरत है, छोटी खुराक में और बहुत सावधानी से और केवल बीमारी के मामलों में। पौधों में महत्वपूर्ण खनिजों के अवशोषण अवरोधक होते हैं। उदाहरण के लिए, पत्ता गोभी थायरॉइड ग्रंथि और आयोडीन के साथ इसके उपचार को बाधित करती है। ये समझ में आता है कि हमें पत्तियों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनमें कैलोरी की कमी होती है। पालक, केल, बोक चॉय, सलाद और सभी हरी पत्तियां। बीज, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो मुख्य रूप से बीजों के प्राकृतिक रक्षा तंत्र के कारण हमारे लिए हानिकारक हैं। विषाक्त पदार्थों को कम करने के लिए आपको भिगोने, अम्लीकरण, अंकुरण और पकाने की आवश्यकता होती है। लेक्टिन पौधों के विषाक्त पदार्थों का हिस्सा है, इसे वास्तव में बचने की सिफारिश की जाती है। सन, खसखस, चिया, तिल और ताहिनी। चावल, केवल एशियाई लोगों के लिए चावल एक प्रकार का अनाज है जिसे आप मिस नहीं करते हैं, लेकिन इसमें विषाक्त पदार्थ होते हैं जो केवल गर्म करने से नहीं टूटते हैं। इसके अलावा, हजारों वर्षों तक चावल के संपर्क में रहने के बाद संभवतः एशियाई लोगों ने श्वेत मनुष्य की तुलना में चावल को पचाने के लिए अधिक उपयुक्त पाचन तंत्र विकसित किया। विशिष्ट भोजन के संपर्क के कारण कुछ एशियाई आबादी में आनुवंशिक अनुकूलन का एक उदाहरण ALDH2 तारांकन 2 का बढ़ा हुआ प्रचलन है, जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज 2 ALDH2 जीन का एक प्रकार है। यह आनुवंशिक गुण अल्कोहल को चयापचय करने की कम क्षमता से जुड़ा हुआ है, जिससे अल्कोहल प्रतिक्रिया या एशियाई वॉश नामक स्थिति उत्पन्न होती है। यह वेरिएंट सबसे अधिक पूर्वी एशियाई आबादी में पाया जाता है, जिसमें चीनी, जापानी और कोरियाई मूल के लोग शामिल हैं। इस आनुवंशिक गुण की व्यापकता चावल आधारित अल्कोहल जैसे साके और सोजू की ऐतिहासिक खपत से संबंधित हो सकती है, जिसमें अन्य अल्कोहल पेय पदार्थों की तुलना में अल्कोहल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। शराब को चयापचय करने की कम क्षमता इन आबादी में अत्यधिक शराब की खपत और शराब से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदान कर सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि एशियाई लोग दूध के प्रति अधिक संवेदनशील हैं क्योंकि वे श्वेत व्यक्ति की तरह इसके संपर्क में नहीं आए हैं। लैक्टोज असहिष्णुता की व्यापकता विभिन्न आबादी और जातीय समूहों में भिन्न भिन्न होती है। सामान्य तौर पर पूर्वी एशियाई आबादी में यूरोपीय मूल की आबादी की तुलना में लैक्टोज असहिष्णुता की घटना अधिक होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 70-100% पूर्वी एशियाई लोग लैक्टोज असहिष्णुता से पीड़ित हैं, जबकि यूरोपीय मूल के लोगों में इसका प्रसार 5% से 20% तक कम है। चावल में पाए जाने वाले लेक्टिन को ओरिजा सेटिवा एग्लूटिनिन या कहा जाता है चावल एग्लूटिनिन। ये प्रोटीन विशिष्ट चीनी अणुओं से बन सकता है और पौधे के भीतर विभिन्न जैविक कार्यों में शामिल होता है और कीटों को चावल के बीज खाने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। चावल एग्लूटिनिन मुख्य रूप से चावल के दानों की बाहरी परतों जैसे कि भूसी में पाया जाता है। ग्लूटेन की तरह ये संभवतः मनुष्यों को नुकसान पहुंचाता है। पूरी तरह से स्वतंत्र विचार में, क्योंकि एक निश्चित भोजन के संपर्क के अनुसार गोरे लोगों में आनुवंशिक परिवर्तन हुए थे, न कि एशियाई लोगों में, इसके विपरीत भी हुआ, अर्थात एशियाई लोगों में आनुवंशिक परिवर्तन हुए थे चावल के पाचन में सहायता करें। यहां एक अध्ययन है कि एशियाई लोगों में समुद्री शैवाल को पचाने में आनुवंशिक परिवर्तन हुआ। इसके अलावा चावल अम्लीकृत नहीं होता है और इसमें एग्लूटोनिन नामक एक विष होता है। जब इस तथ्य का क्रॉस रेफर किया जाता है कि चावल मुझे असहज बनाता है, तो उच्च संभावना के साथ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चावल गोरे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है या ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पूर्वज चावल के संपर्क में नहीं आए थे। जड़ें, सभी जड़ों में विषाक्त पदार्थ होते हैं जिन्हें बेअसर करने की आवश्यकता होती है। हर किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो बस भाप लें या पकाएं। शकरकंद, जेरूसलम आर्टिचौक, आर्टिचौक। संदेह में प्याज, लहसुन, प्याज, लीक, सौंफ, मूली, मूली और सभी मशरूम, युका रूट। तर्क सरल है, विकास में जड़ों में विषाक्त पदार्थ शामिल हो गए जो कीटों को उन्हें खाने से रोकते हैं। गर्म करने और पकाने से संभवतः अधिकांश विषाक्त पदार्थ कम हो जाते हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त आंतों वाले लोगों में ये विषाक्त पदार्थ शरीर में विभिन्न प्रणालियों को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। नमक, जितना संभव हो सके सभी प्रकार के नमक से बचें। मनुष्य लाखों वर्षों तक बिना नमक मिलाए बहुत अच्छा जीवन बिताते रहे। माई लाइफ अमंग द इंडियंस पृष्ठ 82। मैंने कभी ऐसे भारतीयों का सामना नहीं किया है जो किसी भी प्रकार के नमक का उपयोग करते हैं, मांस को सुखाने के लिए भी नहीं। सबूत के बोझ के कानून के अनुसार यह बहुत संभव है कि इसमें एक नया घटक जोड़ा जाए मानव मेनू स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। पिछले हजारों वर्षों से सभी प्रकार के भोजन के लिए मेनू में नमक जोड़ा जा रहा है और हाल के वर्षों में इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। शोध से पता चलता है कि नमक पाचन तंत्र और अच्छे बैक्टीरिया को कैसे नुकसान पहुंचाता है। आंते, प्राकृतिक नमक भोजन में ताजगी जोड़ता है और संभवतः हमारे लिए हानिकारक है। प्रसंस्कृत नमक, शायद वो सस्ता नमक जो आप खाते हैं, हमारे लिए और भी अधिक हानिकारक है। एक दिलचस्प सवाल यह है कि क्या नमक के प्रति हमारा प्यार एक अर्जित स्वाद है या हममें निहित। ऊपर दिए गए शोध से ऐसा लगता है कि नमकीन खाद्य पदार्थों का प्यार अर्जित हो गया है और इसलिए भोजन को संरक्षित करने की इच्छा के अलावा हमें नमक वाले खाद्य पदार्थों की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। विकास के अधिकांश वर्षों में हमने नमक नहीं खाया, इसलिए तार्किक निष्कर्ष यह है कि हमें नमक की आवश्यकता नहीं है और यह टूल्स फॉर फ्रीडम में टूल 7 के अनुसार मानव शरीर में लाखों प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाता है। नट्स, खाने को कम करने के लिए सभी प्रकार के मेवों में फाइटिक एसिड के कारण कोई छिलका नहीं होता और उनका छिलका छोटा होता है। मूंगफली और उनके मेवे जो फलियां हैं को छोड़कर और उनमें से किससे बचना बेहतर है। बेहतर है कि एक दिन के लिए नमक के साथ पानी में भिगोकर सुखा लें, वे इसी तरह खाते थे। फलियां, चने, बीन्स, दाल आदि का सेवन कम करना पसंद करते हैं या 24 घंटे के लिए भिगोकर 3 घंटे तक पकाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि सभी लोग अलग अलग प्रकार के भोजन को समान रूप से पचाते नहीं हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय लोगों ने शैवाल और चावल को अधिक पसंद किया है। ये संभव है कि ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि दुनिया के उन क्षेत्रों से फलियों के विषाक्त पदार्थों से कैसे बचा जाए जहां वे संभवतः उनके संपर्क में थे। मुझे यकीन है कि मैं उनमें से नहीं हूं। शैवाल, सब्जियों और पत्तियों के रूप में शैवाल को पतला करने के लिए। यदि कुछ भी हो तो सभी प्रकार के शैवाल को कुछ मिनटों के लिए पानी में पकाएं। ये जांचने की सिफारिश की जाती है कि आप शैवाल के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। सभी लोगों में पर्याप्त मात्रा में एंजाइम और आंतों के बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो शैवाल को अच्छे तरीके से तोड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। ड्रग्स और शराब, ड्रग्स के साथ समस्या यह है कि वे हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसलिए मैं किसी भी प्रकार की दवा के साथ खिलवाड़ न करने की सलाह दूंगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दवाएं हमारे मस्तिष्क को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाती हैं। मध्यम मात्रा में शराब स्वीकार्य है। यह अकारण नहीं है कि अधिकांश हिंसक और क्रूर अपराधों में ड्रग्स और अल्कोहल शामिल हैं। हर कीमत पर सभी अखमीरी गेहूं उत्पादों, ब्रेड, एक प्रकार का अनाज, पास्ता, पेस्ट्री, सभी तेल, अंडे, गाय का दूध, प्रसंस्कृत नमक, परिरक्षकों से बचें, मक्का, जई, चीनी, सेम, मूंगफली, आलू, चीनी के विकल्प, कैफीन, एंटीबायोटिक्स और पेट में एसिड कम करने वाले। इसके अलावा मांस के विकल्प से पूरी तरह बचें। ब्रेड और दूध पूरी तरह से संसाधित होते हैं और मूल की तुलना में हमारे लिए बहुत कम अच्छे होते हैं। केवल तर्क के साथ विकास। मनुष्यों के लिए उपयुक्त आहार तक पहुंचने के सभी प्रयास विफल रहे क्योंकि उन्होंने विज्ञान या भावना के माध्यम से जाने की कोशिश की। ये समझने की कोशिश करें कि स्वस्थ क्या है, लेकिन समाधान केवल विकासवाद, मनुष्य के इतिहास, मानव वानर और तर्क के अभ्यास से आता है क्योंकि हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उन्होंने क्या खाया और कितनी मात्रा में खाया। मुफ्त आहार पर पहुंचना मनुष्यों के लिए उपयुक्त आहार है मुख्य रूप से विकास और मानव विज्ञान के साथ साथ आत्म प्रयोगों, अध्ययन पढ़ने, किताबें पढ़ने, स्वतंत्र विचार और प्रकृति को देखने की मदद से। प्रत्येक जानवर, मनुष्यों सहित को वही खाना चाहिए जो उसने अपने अतीत में खाया था। हम आज जानते हैं कि प्राचीन मनुष्य का आहार क्या था। कंकालों के दांतों पर पाए गए अवशेषों के अनुसार, साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आज रहने वाली जनजातियों का अवलोकन करके अध्ययन करने से कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति बाहर घूम रहा है, जो सबसे अधिक उपलब्ध है उसके लिए भोजन है। जानवर, कीड़े मकौड़े जैसे सबसे छोटे जानवर से लेकर हिरण जैसे सबसे बड़े जानवर तक। बाकी खाद्य पदार्थों में हम पक्षियों और विभिन्न कीटों से प्रतिस्पर्धा करते हैं जो हमसे पहले उन्हें खाते थे, जैसे पक्षियों के खिलाफ फलों पर युद्ध। वास्तव में अधिकांश फल पक्षियों द्वारा खाए जाने के लिए अनुकूलित होते हैं। आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है एक सेब खाने के लिए, लेकिन एक गिलहरी या हिरण का शिकार करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, और इसलिए आप समय के साथ मानव मस्तिष्क के विकास को देखते हैं। जीवित वातावरण को अपनाने के संदर्भ में जो कठिन और कठिन होता जा रहा है, और साथ ही इसके संदर्भ में भी शिकार में सहयोग की आवश्यकता। हम अलग हो गए, हमने कृषि का आविष्कार किया और हम एकजुट हो गए। मनुष्यों ने लगभग 100,000 साल पहले कई लहरों में अफ्रीका छोड़ा। 9,000 वर्ष पहले हमारे अलग होने के बाद कृषि क्रांति हुई। इसका आवश्यक रूप से मतलब यह है कि पर्यावरण और आहार के लिए एक व्यक्तिगत अनुकूलन था, क्योंकि माना जाता है कि विभिन्न समूहों के बीच बहुत अधिक मिश्रण के बिना एक लंबा अलगाव था। साथ ही साथ कृषि विधियों और जानवरों और पौधों के प्रजनन का आविष्कार भी हुआ था। यही कारण है कि हम विभिन्न त्वचा टोन, विभिन्न पतली हवा के लिए अनुकूलन और कई अन्य विशेषताएं देखते हैं जिन्हें विकास को विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ा। 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, सभी के लिए अच्छा है वह आहार जिसके साथ हमने अफ्रीका छोड़ा था। कुछ लोगों के लिए अच्छा है एक ऐसा आहार जिसे कुछ लोगों ने वर्षों से अपना लिया है, जैसे कि बीन्स और दक्षिण अमेरिकी। किसी के लिए अच्छा नहीं है एक ऐसा आहार जिसे किसी के लिए नहीं के लिए अनुकूलित किया गया है। प्राचीन काल से मनुष्य जो खाते आ रहे हैं उसका पालन करना सबसे अच्छा है, जिसका अर्थ है सबसे पुराना भोजन, सभी के लिए अच्छा, फल, मछली, मांस और शहद, और उसके बाद ही विभिन्न प्रकार के अनाज, कुछ लोगों के लिए अच्छा। गैर पशु वसा किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जहर या सिर्फ उम्र बढ़ना। जब आप पश्चिमी समाज में बीमारियों के वितरण पर डेटा का विश्लेषण करते हैं तो आप विषाक्तता के लक्षणों को देखने से बच नहीं सकते हैं। मेरी राय में पौधों में विषाक्त पदार्थों द्वारा मधुमेह, धमनी काठिन्य, गठिया, मोटापा और कई ऑटोइम्यून बीमारियां। इन बीमारियों के लक्षण 30-40 साल के शिकारियों में भी दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां तक कि संरक्षित जनजातियों में भी नहीं। आज हम बहुत अधिक उम्र में जी रहे हैं और इसलिए संभवतः भोजन से विषाक्त पदार्थों का प्रभाव देखते हैं। यहां आप एक लेख पढ़ेंगे जहां ये स्पष्ट है कि लेखक अनुमान लगा रहा है कि क्या खाना चाहिए। यहां कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। शाकाहार एक मुफ्त आहार के विपरीत है मेरी राय में, क्योंकि हालांकि इसमें तर्क, जानवरों के लिए करुणा और पर्यावरण का संरक्षण है, लेकिन यह मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें पौधों के विषाक्त पदार्थ होते हैं। शाकाहार अन्य प्रकार के पोषण की तरह बहुत मूल्यवान है जब इसमें प्रसंस्कृत भोजन और चीनी शामिल नहीं होती है। मैंने जो भी जानकारी देखी और उसका विश्लेषण किया है उसके अनुसार मनुष्य मुख्य रूप से जानवरों से खाने के लिए बना है। हम इसे अच्छा मानते हैं कि मांस और वसा हमारी शर्करा को नहीं बढ़ाते हैं। मनुष्यों के लिए उच्च शर्करा सभी शरीर प्रणालियों के लिए विनाशकारी है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम कितने वर्षों से इस भोजन के संपर्क में हैं। मांस हमारे आहार में कई मिलियन साल पहले आया, रोटी 7,000 साल पहले और कैनोला तेल केवल 40 साल पहले, इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनमें से प्रत्येक खाद्य पदार्थ के लिए अनुकूलता की संभावना क्या है। इसके अलावा मनुष्य दुनिया भर में स्थानांतरित और फैल गए और इस प्रकार उनका आहार वहीं के अनुरूप हो गया जहां वे थे, और जरूरी नहीं कि उन्हें क्या खाना चाहिए था। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका में आहार मुख्य रूप से मक्का और आलू था, जापान की तुलना में जहां आहार था मछली और चावल था। वास्तव में हम प्राचीन काल में और आज भी दक्षिण अमेरिकियों की तुलना में जापानियों की जीवन प्रत्याशा में बहुत अंतर देखते हैं। चावल एक विशिष्ट भोजन का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे केवल एशियाई लोग ही खाते थे। एक अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में अंतर होता है, और साथ ही एक अध्ययन से पता चलता है कि एशियाई लोगों की समुद्री शैवाल को पचाने की क्षमता होती है। आज हम जानते हैं कि मकई और आलू में कई विष होते हैं, और यह समझ में आता है क्योंकि उन्होंने कीटों के खिलाफ रक्षा तंत्र विकसित किया है। आलू की कोई अवधि नहीं होती जब वो चाहता है कि कीट उसे खाएं, फलों के समान। विज्ञान से पता चलता है कि खाना पकाने से आलू से सभी विषाक्त पदार्थ नहीं निकलते हैं, हालांकि निश्चित रूप से आलू के विकास में गर्म करने की ट्रिक को ध्यान में नहीं रखा गया था। जब मनुष्यों ने भोजन पकाने और भूनने के लिए आग का उपयोग करना शुरू कर दिया और इस प्रकार उनके मेनू का विस्तार इस प्रकार हो गया, जड़ें, सब्जियां, फलियां और इसी तरह का भोजन, जिसे वे आग के उपयोग के बिना नहीं खा सकते थे। बेशक गर्म करने से पौधों से सभी विषाक्त पदार्थ नहीं निकले, इसलिए इन खाद्य पदार्थों का उपभोग करने में सक्षम होने के लिए भिगोने, अंकुरित करने और किण्वन जैसी अतिरिक्त विधियां विकसित की गईं। जहर मूल रूप से कुछ भी कर सकता है और किसी भी समय अपने संकेत दे सकता है। मेरी राय में संपूर्ण मानवता पौधों के विषाक्त पदार्थों से विषाक्त हो गई है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मनुष्य इतने प्रकार के पौधे खा सकें, जबकि प्रत्येक पौधे में सैकड़ों या दर्जनों अलग अलग विष होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि बच्चों को सब्जियां और पत्तियां पसंद नहीं हैं, वे अक्सर कड़वे, मसालेदार और खट्टे स्वादों के प्रति स्वाभाविक घृणा दिखाते हैं, जो संभवतः विषाक्तता को दर्शाता है। इसलिए प्राकृतिक चयन देवी के माध्यम से स्वादों के प्रति घृणा विकसित हुई है। मसालेदार, कड़वे और खट्टे को नापसंद करना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि यह विषाक्तता का प्रतीक है। मीठा और वसायुक्त खाने के लिए तैयार होने का प्रतीक है और यह पोषण के बारे में स्वतंत्र सोच के लिए महत्वपूर्ण है। मीठे और वसायुक्त स्वादों के लिए एक सहज प्राथमिकता सुरक्षित और आसानी से पचने योग्य खाद्य पदार्थों का उपभोग करने की इच्छा को प्रतिबिंबित कर सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकारी संग्रहकर्ता, जो कृषि के आगमन से पहले रहते थे, उनमें आधुनिक समाज को प्रभावित करने वाली पुरानी बीमारियां कम हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि खेती के तरीकों को अपनाने के बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिससे पता चलता है कि कृषि जीवन शैली में बदलाव से मानव स्वास्थ्य पर अवांछित परिणाम हो सकते हैं, धीमी विषाक्तता के समान, न कि केवल उम्र बढ़ने के प्रभाव के समान। ये देखा गया है कि आबादी में परिवर्तन होता है, जंगल में रहने से लेकर आधुनिक जीवन तक आधुनिक भोजन के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित हैं, क्योंकि वे हमारी तरह कई हजार वर्षों तक इसके संपर्क में नहीं आए और इसलिए उचित आनुवंशिक अनुकूलन से नहीं गुजरे। उदाहरण के लिए, आदिवासी लोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं आदि के प्रति कई गुना अधिक संवेदनशील होते हैं। इससे पता चलता है कि आधुनिक आहार मूल रूप से किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो हजारों वर्षों से इसके संपर्क में नहीं आए हैं, ये और भी हानिकारक है। मूल अमेरिकी शराब के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि उनके पास इसका कोई विकल्प, विकासवादी परिचय नहीं था, लेकिन श्वेत व्यक्ति भी इस तरह की लत से पीड़ित था और बच्चे पैदा करने की उसकी क्षमता को नुकसान पहुंचाता था। कृषि क्रांति से पहले मनुष्य फलों और पशु प्रोटीन के आहार पर निर्भर थे, जो पोषक तत्वों की संतुलित विविधता प्रदान करते थे। कुछ सबूतों से पता चलता है कि आधुनिक मनुष्यों की तुलना में उनकी हड्डियां मजबूत थीं, दांत स्वस्थ थे और मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी स्थितियों की घटनाएं कम थीं। हालांकि कृषि में संक्रमण के साथ मानव आहार अनाज फलों पर अधिक केंद्रित हो गया और पौधे, जिससे कार्बोहाइड्रेट की खपत में वृद्धि होती है। आहार की आदतों में इस बदलाव ने समग्र स्वास्थ्य में गिरावट में योगदान दिया, क्योंकि लोग पोषण संबंधी कमियों, दंत समस्याओं और पुरानी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। जबकि कृषि क्रांति ने जटिल मानव समाजों के विकास और सभ्यता के विकास को सक्षम किया, लेकिन इसमें एक मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव। ऐसा लगता है कि शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से कृषि जीवन शैली में परिवर्तन के कारण पुरानी बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि हुई है, जो धीमी विषाक्तता की याद दिलाती है, न कि केवल उम्र बढ़ने के प्रभाव। पौधों में साइनाइड के बारे में उत्कृष्ट लेख नहीं कि मांसपेशियों को मत खींचिए। हम हर समय प्रलोभन का विरोध करने के लिए नहीं बने हैं, इसीलिए यह अनुशंसा की जाती है कि आप उस भोजन को अपनी पहुंच के भीतर न रखें जिसे आप खाना नहीं चाहते हैं। यदि आप रोकना चाहते हैं तो सिगरेट को न देखना ही बेहतर है। इस सवाल के संबंध में कि क्या बच्चों को घर पर अस्वास्थ्यकर भोजन देना चाहिए, स्पष्ट रूप से नहीं। अब आगे पढ़ें। बच्चों के लिए प्रलोभन का विरोध करना आमतौर पर वयस्कों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, जिसे घर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों के जोखिम को कम करना विशेष रूप से सहायक होता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों को प्रलोभनों से इनकार करने में कठिनाई होगी। आवेग नियंत्रण विकसित नहीं, बच्चों के मस्तिष्क, विशेष रूप से निर्णय लेने और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप वे अक्सर आत्मनियमन के साथ संघर्ष करते हैं और दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने के बजाय तात्कालिक इच्छाओं के आगे झुकने की अधिक संभावना रखते हैं। परिणामों की सीमित समझ के साथ छोटे बच्चे अस्वास्थ्यकर विकल्पों के संभावित नकारात्मक परिणामों को नहीं समझ सकते हैं, जैसे उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव या पुरानी बीमारियों के विकसित होने के जोखिम के रूप में। समझ की यह कमी उनके लिए प्रलोभनों का विरोध करना कठिन बना देती है। बाहरी उत्तेजनाओं के मजबूत प्रभाव के कारण बच्चे दृश्य संकेतों, गंध और स्वाद सहित अपने वातावरण में उत्तेजनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जब आकर्षक, अस्वास्थ्यकर विकल्पों का सामना करना पड़ता है तो इन उत्तेजनाओं के प्रति उनकी बढ़ती प्रतिक्रिया के कारण उन्हें विरोध करने में कठिनाई हो सकती है। साथियों का दबाव। बच्चे अपने साथियों से बहुत अधिक प्रभावित हो सकते हैं और यदि उनके दोस्त ऐसा करते हैं तो वे अस्वास्थ्यकर विकल्पों में शामिल होने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं। ये सामाजिक प्रभाव उनके लिए प्रलोभनों को न कहना अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है। भोजन से भावनात्मक जुड़ाव के कारण बच्चे कुछ खाद्य पदार्थों को आराम, प्यार या इनाम से जोड़ सकते हैं, जिससे घर पर उपलब्ध होने पर इन वस्तुओं को अस्वीकार करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। घर में अस्वास्थ्यकर भोजन विकल्पों की उपस्थिति को कम करके माता पिता अपने बच्चों को इन प्रलोभनों से बचने और स्वस्थ विकल्पों को अधिक सुलभ बनाने में मदद कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण न केवल बच्चों को बेहतर खाने की आदतें विकसित करने में सहायता करता है बल्कि उन्हें संतुलित और पौष्टिक आहार बनाए रखने में दीर्घकालिक सफलता के लिए भी तैयार करता है। मनुष्य स्वभाव से ही प्रलोभन के प्रति संवेदनशील होते हैं और हर समय इससे चिपके रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अध्ययन और रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से संकेत मिलता है कि अस्वास्थ्यकर आदतों या व्यसनी व्यवहार से बचने के लिए एक प्रभावी रणनीति प्रलोभन के स्रोत के संपर्क को खत्म करना या कम करना है। उदाहरण के लिए, जब भोजन की बात आती है तो अध्ययनों से पता चला है कि लोगों में अस्वास्थ्यकर उपभोग करने की अधिक संभावना है स्नैक्स जब वे आसानी से उपलब्ध हों। वानसिंह, पेंटर और ली, 2006। ऐसी वस्तुओं को नजरों से दूर रखकर या उन्हें बिल्कुल न खरीदकर लोग उनके आदी होने की संभावना को कम कर सकते हैं। इसके बजाय फलों और सब्जियों जैसे स्वास्थ्यवर्धक भोजन विकल्पों को पहुंच के भीतर रखने से खाने की बेहतर आदतों को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह जो लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए शोध से पता चलता है कि दृश्य संकेतों या अनुस्मारक से बचना मददगार हो सकता है। टिफनी और ड्रोब्स 1991 के एक अध्ययन में पाया गया कि धूम्रपान से संबंधित संकेतों के संपर्क में आने वाले लोगों को सिगरेट के लिए तीव्र लालसा का अनुभव हुआ। इस प्रकार सिगरेट को नजरों से दूर रखना और ऐसे वातावरण से बचना जहां धूम्रपान आम है, लोगों को इसे छोड़ने के प्रयास में मदद मिल सकती है। प्रलोभन के प्रति हमारी सहज संवेदनशीलता को समझने से हमें इसका अधिक प्रभावी ढंग से विरोध करने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद मिल सकती है। अस्वास्थ्यकर या व्यसनी उत्तेजनाओं के संपर्क को कम करके हम अपने लिए स्वस्थ आदतों और व्यवहारों को बनाए रखना आसान बना सकते हैं। विषाक्तता और न केवल उम्र बढ़ने के लिए एक और स्पष्टीकरण यह है कि जो आबादी प्रकृति में रहने से आधुनिक जीवन में स्थानांतरित होती है वे आधुनिक भोजन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं, क्योंकि वे इसके संपर्क में नहीं आए थे जैसा कि हम कई हजार वर्षों से कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने आनुवंशिक रूप से उपयुक्त अनुकूलन नहीं किया। उदाहरण के लिए आदिवासी लोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं आदि के प्रति कई गुना अधिक संवेदनशील होते हैं। इससे पता चलता है कि आधुनिक आहार मूल रूप से किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो हजारों वर्षों से इसके संपर्क में नहीं आए हैं ये और भी हानिकारक है। मूल अमेरिकी शराब के प्रति अधिक संवेदनशील हैं क्योंकि उनके पास इसका कोई विकल्प, विकासवादी परिचय नहीं था, लेकिन श्वेत व्यक्ति भी इस तरह की लत से पीड़ित था और बच्चे पैदा करने की उसकी क्षमता खराब हो गई थी। गैर वैज्ञानिक भावना से स्थानापन विकल्प, भले ही यह मैं इतना नहीं हूँ, प्रकृति को ईंधन देना पसंद नहीं है और ईंधन भरने के खिलाफ सुंदर तंत्र हैं प्रकृति का, जिनमें से एक आज हो रहा है जब दुनिया गर्म हो रही है क्योंकि पृथ्वी पर प्राकृतिक पर्यावरण नष्ट हो रहा है। हमें गैर किण्वित ग्लूटेन उत्पादों, स्वच्छ चीनी, कैफीन और अप्राकृतिक परिस्थितियों में संसाधित या उगाए गए मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और अच्छी बात यह है कि इसके विकल्प अक्सर मूल की तुलना में हमारे लिए बहुत अधिक जहरीले होते हैं। वैज्ञानिक शब्दों में के लिए विकल्प दूध, चीनी, ग्लूटेन और मांस जैसे सामान्य खाद्य पदार्थों की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि वे अक्सर केंद्रित होते हैं और वे उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते जितने कि बाजार में बेचे जाते हैं। ये अक्सर हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आज ज्ञात अधिकांश सांद्रण हमारे लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमारे विकास के वर्षों में हम सांद्रणों के संपर्क में नहीं आए थे। यदि हम ताहिनी को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं तो ताहिनी के 100 ग्राम हिस्से में लगभग 1 किलोग्राम तिल होता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 1 किलोग्राम तिल खाने का कोई मतलब नहीं है और समस्या यह है कि तिल में प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कीटों को रोकते हैं। इसे खाने से तिल के सांद्रण में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता होती है। सबसे बुरा है जई आधारित दूध का विकल्प, विशेष रूप से विषाक्त जई। दूध के विकल्प जैसे बादाम, सोया या चावल का दूध वास्तव में इन उत्पादों की एकाग्रता है जिनमें प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ होते हैं और उनकी एकाग्रता में हम वास्तव में इनकी एकाग्रता का उपभोग कर रहे हैं विषाक्त पदार्थ। इसके अलावा विकल्प में गाय या बकरी के दूध में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि पौधे आधारित दूध गाय के दूध के समान स्वास्थ्य लाभ प्रदान नहीं कर सकता है और इसके विकल्प में सोया और बादाम में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ होते हैं। कृत्रिम मिठास जैसे चीनी के विकल्प कैलोरी कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कुछ अध्ययनों से पता चला है कि वे वजन बढ़ाने, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। शहद या एगेव सिरप जैसे प्राकृतिक चीनी के विकल्प में अभी भी कैलोरी होती है और यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो यह वजन बढ़ाने में योगदान कर सकता है। सही तरीका यह है कि अतिरिक्त चीनी वाले उत्पादों का सेवन न करें, आपको इसकी आदत जल्दी पड़ जाती है। चीनी के विकल्प केवल आप पर ही काम करते हैं, संभवतः वे वास्तव में चीनी से बेहतर नहीं हैं। शुद्ध चीनी का एकमात्र विकल्प शून्य शुद्ध चीनी है। सीलिएक रोग वाले लोगों के लिए ग्लूटेन मुक्त उत्पाद महत्वपूर्ण हैं। ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले लोग, जो मूल रूप से हर कोई है, औद्योगिक ग्लूटेन विकल्प से दूर रहना बेहतर है। ग्लूटेन गेहूं के विभिन्न प्रकारों में मौजूद होता है और सही तरीका यह है कि गेहूं से पूरी तरह परहेज किया जाए और उसके स्थान पर गेहूं लेने की कोशिश न की जाए। ग्लूटेन मुक्त खाद्य पदार्थ कैलोरी, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा में उच्च हो सकते हैं। मांस के विकल्प जैसे कि सोया आधारित उत्पाद, सीतान या पौधे आधारित हैमबर्गर, मूल रूप से सोया, मटर या किसी अन्य पौधे का सांद्रण होते हैं और आमतौर पर सोया, मटर या अन्य पौधों में प्राकृतिक विषाक्त पदार्थों की सांद्रता होती है। मनुष्य उस पौधे को खाने के लिए अनुकूलित नहीं है जब तक कि वो पका हुआ फल न हो या अम्लीकरण या लंबे समय तक गर्म करने जैसे विषाक्त पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया से न गुजरा हो। तेल क्यों कहें पतले नहीं, हम लगभग हर क्षेत्र में अच्छा होने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, इसमें गणित का क्षेत्र भी शामिल है। गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आपको बस अभ्यास में घंटों बिताने होंगे, जबकि स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए मात्रा की परवाह किए बिना वही खाना आसान है जो हमें एक इंसान के रूप में सूट करता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो आनुवंशिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिसके कारण गणित सीखने में असमर्थता होती है या पुरानी चयापचय संबंधी बीमारियों के कारण उनका वजन असामान्य हो जाता है। सामान्य वजन होने का मतलब मूल रूप से किसी चयापचय रोग से पीड़ित न होना है। शरीर में एक जटिल तंत्र है जो जानता है कि हमें उचित वजन तक कैसे पहुंचाया जाए। चीनी, विटामिन सी और सोडियम के स्तर का समर्थन करने वाले सैकड़ों तंत्रों की तरह इसे होमियोस्टेसिस कहा जाता है। शरीर संतुलित रहना चाहता है और यह वजन के लिए भी सच है। मेटाबॉलिक बीमारी के लक्षणों में से एक है भोजन के तुरंत बाद भूख लगना और वजन, जो 18 साल की उम्र में हमारे वजन से बहुत अलग है। आनुवंशिकी वास्तव में कैसे मदद करती है? आनुवंशिकी उन चीजों को खाने में मदद करती है जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है और इससे मोटापा नहीं बढ़ता, परंतु जो मनुष्य के लिए उपयुक्त भोजन खाता है उसका वजन सामान्य रहेगा। आनुवंशिकी वास्तव में हमारे लिए उपयुक्त नहीं होने वाले भोजन के साथ शरीर को जहर देने के बावजूद चयापचय संबंधी बीमारी से बचने में हमारी मदद करती है। वजन स्थिरीकरण तंत्र अब अच्छी तरह से काम नहीं करता है, लेकिन आनुवंशिकी एक निश्चित उम्र तक भी काम करती है। इसे तब खूबसूरत माना जाता है जब एक निश्चित उम्र में लोगों का वजन उतना नहीं रह जाता जितना पहले था। विज्ञान और तर्क से ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या खाते हैं ताकि हमारा वजन स्थिरीकरण तंत्र खराब ना हो, न कि मात्रा। आखिरकार मान लीजिए कि एक पक्षी जो 100 टन चेरी का सामना करता है फूलेगा नहीं और उड़ने में सक्षम नहीं होगा। इन पक्षियों के जीन इसकी रक्षा करते हैं। इस रक्षा तंत्र के बिना एक पक्षी अब जंगल में नहीं है, लेकिन यदि हम इसे एक ऐसा पदार्थ देते हैं जो इसके वजन स्थिरीकरण प्रणाली को भ्रमित करता है, जैसे ट्रांसजेनिक मकई, तो यह संभव और उचित है कि आप एक ऐसे वजन तक पहुंच जाएं जहां आप उड़ नहीं सकते और पागल लोगों से दूर नहीं भाग सकते। इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग जैसा कुछ नहीं है। अपने कुत्ते पर एक प्रयोग करें, उसे उतना ही हिलाने वाला या पका हुआ मांस दें जितना वो खा सके। देखें कि क्या उसका वजन बढ़ता है। उसे कुछ कुत्ते का भोजन दें जिसे वो खा सके और देख सके कि किस कारण से वो मोटा हो रहा है। बुनियादी संकेत, प्यास और भूख के बारे में संकेत, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने शरीर पर भरोसा करते हैं कि जब आप ठंडे या गर्म होते हैं तो संकेत देते हैं और आप यह नहीं देखते हैं कि वास्तव में तापमान क्या है, ठीक इसी तरह शरीर भूख या प्यास लगने पर हमें संकेत देना जानता है और उसे उसकी बात सुननी चाहिए। कभी कभी बीमारी में शरीर खाने के प्रति अनिच्छा का संकेत देता है और यह सही समझ में आता है। बीमारी के दौरान शरीर अपनी ऊर्जा को लड़ने के लिए निर्देशित करना पसंद करता है, न कि पाचन के लिए। समस्याओं में से एक चयापचय रोग है जिसमें शरीर वास्तव में हमें ये संकेत देने की क्षमता खो देता है कि हमारा पेट भर गया है। इस बीमारी से ठीक होने का एकमात्र तरीका मनुष्यों के लिए अनुकूलित भोजन खाना है। वर्षों तक मनुष्य के अनुकूल न रहने वाला भोजन मेटाबॉलिक रोग का कारण बनता है। हर किसी को यह अलग अलग उम्र में होता है। यही सिद्धांत पीने पर तब तक लागू होता है जब तक आप अपने शरीर को कैफीन, अल्कोहल या अन्य परिवर्तनशील पदार्थों के साथ भ्रमित नहीं करते हैं। तर्क और विज्ञान से जो निष्कर्ष निकलता है वह है, जब प्यास लगे तो पानी पिएं और जब भूख लगे तब खाएं। डोट मुफ्त आहार में आप कम कार्बोहाइड्रेट और अधिक मांस और मछली खाते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले की तुलना में बहुत अधिक मांस और मछली खाने से न डरें। जब तक आपका पेट न भर जाए तब तक खाएं। संकेतों की प्रतीक्षा करें कि आप अब भूखे नहीं हैं। शरीर हमें संकेत क्यों नहीं देता कि हमें जहर दिया गया है? शरीर हमें संकेत देता है और इसका तरीका है कड़वा, मीठा, मसालेदार, खट्टा, साथ ही साथ अंतर करने की क्षमता गंध की भावना का उपयोग करते हुए। बदबूदार भोजन के खराब होने की संभावना सबसे अधिक होती है और हम उसे नहीं खाएंगे। यह एक मौलिक प्रवृत्ति है जो विकास के लाखों वर्षों में विकसित हुई है। आप खुद से पूछ रहे होंगे, तो मुझे मसालेदार स्वाद कैसा लगता है या कड़वा वसाबी मुझे कैसा लगता है, और हाँ, सिगरेट का स्वाद कैसा लगता है? अल्पावधि में इसने मुझे नहीं मारा, इसलिए और लाओ। शरीर में कई प्रणालियां हैं जिनमें ऐसे पदार्थों की भी कमी होती है जिन्हें शरीर जानता है कि निकट अवधि के लिए उन्हें पहले कहां निर्देशित किया जाए। आमतौर पर मस्तिष्क और ऊर्जा, और केवल तभी दीर्घावधि में हड्डियों की मजबूती और अधिक, आप इसे ऑस्टियोपोरोसिस में देखते हैं। इस लेख में प्रोफेसर ब्रूस एम्स खनिजों और विटामिनों को रूट करने के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। सिगरेट के साथ एक रासायनिक पदार्थ से पूर्वाग्रह का एक और तंत्र काम करता है। निकोटीन मस्तिष्क को एक अच्छा संकेत देता है और फिर हम इसे सिगरेट के साथ जोड़ते हैं और आई प्राप्त करते हैं। लाइक इट, सिगरेट हमें मारना चाहती है लेकिन मस्तिष्क इसे निकोटीन के कारण किसी अच्छी चीज से जोड़ देता है। शरीर अल्पकालिक सोचता है। शरीर में एक प्राकृतिक तंत्र है जो हमें वो खाना जारी रखने की इच्छा देता है जो हमने खाया और नहीं खाया हमें मारें। बच्चे को पर्याप्त समय पर तीखा खाने को दे और उसे तीखा खाना पसंद आने लगेगा। परीक्षण प्रारंभिक स्वाद में होता है और यह बच्चों में देखा जाता है, वे वसा और मीठा चाहते हैं। पौधों के विषाक्त पदार्थों से जहर अलग अलग तरीकों से और किसी भी समय प्रकट हो सकता है, जो इसे एक आम और चिंताजनक मुद्दा बनाता है। मनुष्य पौधों से विभिन्न प्रकार के विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आते हैं क्योंकि प्रत्येक पौधे में सैकड़ों या हजारों अलग अलग विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं। शोध से पता चला है कि कुछ स्वादों के बार बार संपर्क में आने से समय के साथ व्यक्ति की स्वाद प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए जर्नल एपेटाइट में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जो बच्चे बार बार उन सब्जियों के संपर्क में आते हैं जो उन्हें शुरू में नापसंद थी, उनमें समय के साथ उन सब्जियों के प्रति प्राथमिकता विकसित होने की अधिक संभावना थी। निष्कर्ष में पौधों के विषाक्त पदार्थ एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं और बच्चे मीठे और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के लिए प्राकृतिक प्राथमिकता प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि कुछ स्वादों के बार बार संपर्क में आने से स्वाद प्राथमिकताएं बदल सकती हैं और कुछ पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क के संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। सुंदरता के बारे में संकेत हम छोटी उम्र से ही जानते हैं कि सीधापन अच्छा दिखता है और सीधापन बीमार है। वे तुरंत पहचान लेते हैं कि सुडौल सुंदर है और मोटा सुंदर नहीं है। सफेद दांत सुंदर होते हैं और पीले और भूरे दांत सुंदर नहीं होते। हम ऐसी क्षमताओं के साथ क्यों पैदा हुए? हमें सुंदरता के बारे में मस्तिष्क से संकेत मिलता है क्योंकि ऐसी सुंदरता प्रजनन क्षमता को दर्शाती है, कुछ ऐसा जिसने हमारे जीन को स्थानांतरित करने का विकल्प दिया। क्या शरीर को पता है खनिजों आदि की कमी का संकेत कैसे दें? जैसे जानवर खनिज भंडार को चाटते हैं जब उन्हें कमी महसूस होती है, तो क्या नमक की इच्छा हमारे साथ भी कुछ ऐसी ही है? क्या हमें पानी की तरह खनिज पदार्थों की भी प्यास है? मांस की इच्छा? ताज़ा और गर्म भोजन के बारे में एक संकेत है जो हमें सबसे अच्छा लगता है और अच्छे कारणों से, पचाने में आसान, अधिक पौष्टिक और कम खराब बैक्टीरिया के साथ होता है। मेरी राय में, और ये थोड़ा जुआ है, शरीर मुख्य रूप से मांस खाने की इच्छा करके खनिजों की कमी का संकेत देना जानता है। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी कभी इसे महसूस करता हूँ। मैं एक ही समय में कई प्रकार का भोजन नहीं खाता, उदाहरण के लिए मछली के साथ अचार वाली टैफ ब्रेड, अस्थि मज्जा के साथ बीफ या भुने हुए केले के साथ बकरी का दही। मेरा मानना है कि दुनिया में कई प्रकार के भोजन की बाढ़ एक निश्चित प्रकार के भोजन को खाने के संकेत को धुंधला कर देती है जिसमें खनिज होते हैं जिनकी हमारे पास कमी है, लेकिन जैसा कि उल्लेख किया गया है कि यह एक शर्त है क्योंकि मैं उन जानवरों को देखता हूँ जो खनिज भंडार को चाटते हैं और हमारे प्यार को देखते हैं नमक, और यह विकासवादी दृष्टिकोण से भी समझ में आता है कि जानवरों को इसकी कमी महसूस होगी और वे उस भोजन को खाना चाहेंगे जिसमें वे घटक मौजूद हैं जिनकी कमी है। खट्टी रोटी और बकरी का दही मनुष्यों के लिए कैसे उपयुक्त है और फिर भी खट्टा है? अच्छा सवाल है। रोटी या कोई भी अन्य अनाज जो खमीरित किया गया है वह खट्टा होने पर भी हमारे लिए उपयुक्त है और तार्किक व्याख्या यह है कि यह हमारे विकास में नया है। यह शायद अपवादों में से एक है और वास्तव में खट्टे में कई लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो हम खट्टे के रूप में अपेक्षा के अनुरूप पहचाने। यही बात हमारे लिए खट्टे दही पर भी लागू होती है, लेकिन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ये दूध की तुलना में हमारे लिए अधिक उपयुक्त है। खमीरी रोटी पकाने के बाद ही हमारे लिए अच्छी होगी, जबकि दही को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि खट्टा और दही दोनों अपनी किण्वन प्रक्रियाओं में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को शामिल करते हैं, इसमें शामिल विशिष्ट बैक्टीरिया आमतौर पर भिन्न होते हैं। दही मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, विशेष रूप से स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस की क्रिया के माध्यम से दूध को किण्वित करके बनाया जाता है। बैक्टीरिया की ये दो प्रजातियां लैक्टोज, दूध में मौजूद चीनी को लैक्टिक एसिड में बदलने के लिए मिलकर काम करती हैं, जो दूध को गाढ़ा करती हैं और दही को दही का विशिष्ट खट्टा स्वाद और बैक्टीरिया वाला उत्पाद देती हैं, लेकिन इस बार वे हमारे लिए अच्छे हैं। इसके विपरीत आटा किण्वन के लिए जंगली खमीर और एसिड बैक्टीरिया दूध के मिश्रण पर निर्भर करता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस और ल्यूकोनोस्टॉक जेनेरा से। हालांकि खमीर और दही में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के प्रकारों में कुछ ओवरलैप हो सकता है, विशिष्ट जीवाणु प्रजातियां और इसमें शामिल किण्वन प्रक्रियाएं आमतौर पर भिन्न होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अलग अलग स्वाद और बनावट होती हैं। अनुभव 1000 अध्ययनों के लायक है। यहां जो कुछ भी लिखा गया है उसे अपने लिए आजमाएं। उदाहरण के लिए 2 गिलास बकरी के दूध की तुलना में 2 गिलास गाय का दूध पिएं। यदि आप में उनमें से किसी एक के प्रति एक निश्चित संवेदनशीलता है तो आप इसे तुरंत महसूस करेंगे। स्वतंत्र रूप से खाने की कोशिश करें और देखें कि क्या इससे बेहतरी के लिए कोई फर्क पड़ता है। आप इस अनुभव से कुछ भी नहीं खोएंगे। लंबे समय में यह एक पागलपन भरा मुनाफा है, बिल्कुल वही जो एक स्वतंत्र विचार चाहता है, न्यूनतम ऊर्जा निवेश और एक बड़ा मुनाफा। जो प्रयोग ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते वे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वे विश्वसनीय भी होते हैं और एक ऐसा अनुभव भी जिसे आमतौर पर याद रखा जाता है। विज्ञान से पता चलता है कि गाय के दूध में कैसीन प्रकार का प्रोटीन दूध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाता है, न कि लैक्टोज केसिन A2 प्रोटीन प्राचीन काल से मौजूद है और बकरी और भेड़ के दूध में आम है। इतिहास में कहीं न कहीं केवल यूरोपीय गायों में एक उत्परिवर्तन पैदा हुआ था जिसके कारण उन्हें दूध में अधिक कैसिन A2 प्रकार का प्रोटीन देना पड़ा। मेरी राय में यह उत्परिवर्तन गोमांस के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। प्रयोग जैसा कुछ नहीं है। मैंने अमेरिका में सामान्य दूध खरीदा और वो दूध भी जो केवल प्रकार का है, और मैं और मेरी बेटी दोनों ने अलग अलग समय पर 1 गिलास दूध पिया। मेरी पत्नी हमारी बेटी पर प्रयोग करने के लिए मुझसे नाराज थी, लेकिन मैंने उसे शांत किया और कहा कि यह मानवता की भलाई के लिए है। जब हम दोनों ने नियमित दूध पिया तो मुझे और मेरी बेटी को पेट में दर्द हुआ और उसे सिरदर्द भी हुआ। A2 दूध पीने के बाद हम लक्षणों से मुक्त हो गए। निसंदेह वो नहीं जानती थी कि वो किस प्रकार का दूध पी रही है। विज्ञान, अवलोकन और तर्क एक साथ आए। इसराइल में केवल प्रकार का दूध खरीदना असंभव है। एक और प्रयोग जो आपको करना चाहिए, 1 किलो गोमांस खाएं और फिर 1 दिन बाद 1 किलो मछली या 1 किलो मेमना खाएं और आप महसूस करने में अंतर देखेंगे। बने रहें शर्त का दाहिना पक्ष, जिसे हमारे दूर के पूर्वजों ने खाया, और तर्क यह नहीं दिखाता कि वे गलत थे। ये वास्तव में दांव के सही पक्ष पर है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए खाने के लिए क्या उपयुक्त है, लेकिन जब आप एक नया भोजन लाते हैं जिसमें एक नया पदार्थ होता है और पूछते हैं क्या ये हमें ठीक करता है या हमें जहर देता है, 9999 से 10,000 संभावना है कि यह जहर देता है और 1 से 10,000 संभावना है कि यह ठीक हो जाता है, क्योंकि शरीर में लाखों चीजें रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं और यह संभावना बहुत कम है कि आपको कोई नया पदार्थ मिला है। आप दांव का कौन सा पक्ष चुनते हैं? पालक, काले या सुपरफूड के बिना कैसे काम करना है, ये जानने के लिए मानव शरीर को कुछ श्रेय दें। विकास और प्राकृतिक चयन बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं, हजारों अन्य तरीकों से सही रास्ता खोजकर, लेकिन ये संभावना नहीं है कि एक या कोई अन्य सुपरफूड शरीर में लाखों प्रक्रियाओं में सुधार करता है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप ही हों जिन्होंने अभी अभी यह तरीका खोजा है। खनिज और विटामिन RDA की अनुशंसित दैनिक मात्रा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह उन लोगों पर आधारित है जो ऐसे पौधे खाते हैं जिनमें विषाक्त पदार्थ होते हैं जो आयरन और कई अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अवशोषण को रोकते हैं। पोषण में बड़ा रहस्य ये है कि अंत में हम अधिकांश प्रकार के भोजन का समान रूप से आनंद लेते हैं, नए आहार की आदत डालने में केवल कुछ दिन लगते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी निश्चित भोजन के बारे में अपना मन नहीं बदला हो, इसलिए आप शायद समझ सकते हैं कि मेरा क्या मतलब है। मनुष्य अनुकूलनशील हैं, जिसका अर्थ है कि हम दैनिक आधार पर जो करते हैं अंत में हमें इसकी आदत हो जाती है और अधिकांश समय ये हमें पसंद आता है, इसलिए मैं अब जो खाता हूं उसे मैं बदल नहीं सकता का विचार गलत है। मनुष्य अधिकांश प्रकार के भोजन खाने के लिए अनुकूलित नहीं है, भले ही भोजन प्राकृतिक और स्वादिष्ट हो। एक आहार जो कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है वह व्यक्ति के जीन और पर्यावरण के कारण हर किसी पर अलग अलग प्रभाव डालता है, जैसे चरित्र लक्षण पर्यावरण और जीन से प्रभावित होते हैं। प्रकृति में मनुष्य मुश्किल से प्रोटीन और वसा के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलाते हैं, यही चयापचय समस्या का कारण बनता है। आधुनिक समाज में जंगल में रहने वाले मनुष्य एक हाथी का शिकार करते थे, उसे खाते थे और कुछ घंटों के बाद जब उन्हें भूख लगती थी तो वे फल खाते थे। प्रोटीन और वसा के साथ कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण शुगर और मोटापे की समस्या का कारण बनता है। मांस लंबे समय तक पचता है और इस दौरान कार्बोहाइड्रेट के कारण चीनी अधिक होती है। भारतीय और आदिवासी, उन लोगों सहित जिन्होंने आधुनिकीकरण नहीं देखा है, पश्चिमी आहार पर पश्चिमी लोगों की तुलना में बहुत तेजी से बीमार पड़ते हैं। इससे पता चलता है कि हम पश्चिमी आहार से निपटने के लिए थोड़ा विकसित हुए हैं, लेकिन साथ ही यह निश्चित रूप से दिखाता है कि पश्चिमी आहार हमें जहर देता है, अन्यथा इन दो समूहों के लिए अलग अलग प्रभाव डालना संभव नहीं होता। पोषण के अधिकांश रूप जैसे कि केटोजेनिक, पेलियो, शाकाहारी, मांसाहारी दिखाते हैं स्वास्थ्य में सुधार, क्योंकि वे प्रसंस्कृत भोजन की खपत को कम करते हैं, लेकिन इसमें समस्याग्रस्त तत्व होते हैं, पौधे के विषाक्त पदार्थ और विशेष रूप से साबुत अनाज, गाय के दूध और अधिक में। संख्याओं पर ध्यान न दे, 24 ग्राम प्रोटीन, आपने पढ़ा होगा कि हमें 200 की आवश्यकता होती है। हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन ग्राम प्रोटीन, 59 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 25 ग्राम वसा या ऐसा कुछ भी अजीब, लेकिन मानव शरीर उससे कहीं अधिक जटिल है। वो जानता है कि खनिजों और विटामिनों को कैसे संग्रहित किया जाए और किसी चीज की कमी होने पर हमें एहसास दिलाया जाए। जब आप आहार विशेषज्ञों या डॉक्टरों को इस तरह बात करते हुए सुनते हैं जैसे कि मानव शरीर के लिए एक नुस्खा है, तो इसे अनदेखा करें। विकास के लाखों वर्षों में मनुष्य ये गिनती किए बिना जीवित रहा कि उसने कितना मांस, फल या रोटी खाई। आमतौर पर इन लोगों की सलाह इसके विपरीत होती है कि आपको वास्तव में क्या खाना चाहिए। वे अक्सर प्रत्येक भोजन में कहेंगे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। बेशक विपरीत सच है, क्योंकि जब क्षेत्र में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो शरीर वसा और प्रोटीन को बेहतर ढंग से तोड़ देगा। ये पेट में एंजाइमों को बेहतर ढंग से काम करने के लिए आवश्यक अम्लता के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट को अपेक्षाकृत कम अम्लता की आवश्यकता होती है और वसा और प्रोटीन को अपेक्षाकृत अधिक तोड़ने के लिए। मुफ्त आहार खाने की वित्तीय कीमत सामान्य से अधिक महंगी नहीं है। आहार इसके विपरीत यह सस्ता हो सकता है। एक किलोग्राम टैफ की कीमत NIS 20 के आसपास होती है। जब आप स्वयं रोटी बनाते हैं तो इसकी लागत सुपरमार्केट में रोटी खरीदने के समान ही होती है। सभी प्रकार के मीठे पेय पदार्थों पर बचत होती है क्योंकि आप केवल पानी पीते हैं। फल और बकरी दही की कीमत सामान्य आहार में समान होती है और मुफ्त आहार में जैविक खरीदना अनावश्यक है। निचली पंक्ति, एक मुफ्त आहार की कीमत अधिक हो सकती है अल्पावधि में थोड़ा अधिक, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य व्यय और आपके शरीर, दिमाग और दांतों की देखभाल पर बहुत सारा पैसा बचाएगा। बीमार होने पर बहुत पैसा खर्च होता है और यह अप्रिय है। भोजन परीक्षण, क्या हम बिना पकाए, गर्म किए या रसायनों का उपयोग किए बिना खाना खा सकते हैं? यदि ऐसा है और भोजन कड़वा, मसालेदार या खट्टा नहीं है तो ये हमारे खाने के लिए अच्छा भोजन है। खाने से पहले खाना पकाना बेहतर है, लेकिन ये केवल ये देखने के लिए है कि यह मनुष्यों के लिए अच्छा है या नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अन्य खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, ये सिर्फ ये जानने का एक तरीका है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। उदाहरणार्थ, गेहूं को बिना गर्म किए तथा पिसवाए नहीं खाया जा सकता, अतः ये कम उपयुक्त है। मछली और मांस को वैसे ही खाया जा सकता है जैसे वे हैं और इसलिए मनुष्यों के लिए अनुकूलित हैं। परीक्षण के पीछे का तर्क इस तथ्य से उपजा है कि मानव ने विकास के कुछ मिलियन वर्षों की तुलना में केवल कुछ लाख वर्षों तक बड़े पैमाने पर आग और भोजन को गर्म करने का उपयोग किया है। वानर, इसलिए हम कच्चा भोजन, बिना गर्म या बुशल, खाने के लिए काफी अनुकूलित हैं। ऐसे भोजन जो गर्म किया गया हो या बुशल, की जांच की जानी चाहिए। विषहरण की किंवदंती के बजाय विषाक्त पदार्थ न खाएं। हमारा शरीर प्राकृतिक विषहरण तंत्र से सुसज्जित है जो विशेष कार्यशालाओं की आवश्यकता के बिना कुशलतापूर्वक काम करते हैं। वास्तव में शरीर लगातार विषाक्त पदार्थों को समाप्त करता है, न कि केवल विशिष्ट घटनाओं या मित्सपे रेमन में सप्ताहांत जैसे स्थानों के दौरान। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम ठोस भोजन का सेवन करने के लिए बने हैं जिसे चबाने की आवश्यकता होती है। मुख्य विचार शुरू से ही हमारे शरीर को जहर देना नहीं है और हम मुफ्त आहार का पालन करके इसे प्राप्त करते हैं। चबाने से हमारे पाचन तंत्र में विभिन्न एंजाइमों की रिहाई सक्रिय हो जाती है जो कुशल पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देती है। दूसरी ओर, मिश्रित या पिसा हुआ भोजन खाने से तेजी से अवशोषण हो सकता है और रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि हो सकती है जो हमारे शरीर के लिए आदर्श नहीं है। परिणामस्वरूप कई पोषण संबंधी शेक हमारे लिए आवश्यक या फायदेमंद नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर स्वाभाविक रूप से फलों, नट्स और सब्जियों के मिश्रण को एक साथ संसाधित करने के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं। यह आहार पैटर्न मानव इतिहास में आम नहीं था, बल्कि हाल के वर्षों में ही विकसित हुआ है। परिणामस्वरूप हमारे आहार को विकास, विज्ञान, तर्क और संक्षेप में स्वतंत्र विचार के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। ऐसा भोजन है जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त है और भोजन वह नहीं है। परिभाषा स्वस्थ भोजन या सुपर फूड तार्किक परिभाषाएं नहीं है। चारों ओर केवल घास होने पर मनुष्य जिस तरह खाते हैं वह बकरियों और भेड़ों के बारे में जादू है। वे घास खाते हैं और फिर हम उनके दूध के उत्पाद या उन्हें खा सकते हैं। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा बकरियों और भेड़ों के करीब थे प्राचीन समय में, क्योंकि वास्तव में घास ढूंढना फल खोजने की तुलना में बहुत कठिन है और वे शायद ही सब्जियां खाते थे। हाँ, दूध देने वाली गाय के बारे में हर कोई गलत है। किण्वित बकरी का दूध खाना हजारों वर्षों से देखा जा रहा है। ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जो 9000 साल पहले पनीर का उत्पादन दर्शाते हैं। गाय के दूध और बकरी के दूध के बीच अंतर उन्हें पचाने की हमारी क्षमता के संदर्भ में कैसीन नामक प्रोटीन में होता है। अल्फा एस 1 कैसीन और अल्फा एस 2 कैसीन प्रोटीन बकरी, भेड़ और गायों सहित विभिन्न स्तनधारियों के दूध में पाए जाने वाले कैसीन के उपप्रकार हैं। इन कैसीन उपप्रकारों की संरचना और अनुपात प्रजातियों, नस्लों और यहां तक कि व्यक्तिगत जानवरों के बीच भिन्न हो सकते हैं। बीटा कैसीन गायों की कुछ नस्लों जैसे होल्स्टीन गायों के दूध में मौजूद होता है और यह गाय के दूध की तुलना में भेड़ के दूध में कुछ हद तक मौजूद होता है। पचने पर A1 बीटा कैसीन बीटा कैसोमोफिन 7 BCM7 नामक एक बायोएक्टिव पेप्टाइड जारी कर सकता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा, सूजन और धीमी गैस्ट्रिक खाली करने से जुड़ा हुआ है। और यहां दिलचस्प बात यह है, बीटा कैसीन A1 और A2 बीटा कैसीन दूध प्रोटीन के दो संस्करण हैं। अनुमान है कि जिस आनुवंशिक उत्परिवर्तन के परिणामस्वरूप संस्करण A1 आया वह 5000 से 10000 साल पहले हुआ था। जिस आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण संस्करण A1 बीटा कैसीन आया उसमें प्रोटीन श्रृंखला में एकल अमीनो एसिड प्रतिस्थापन शामिल था। इस छोटे से बदलाव ने पाचन के दौरान प्रोटीन के टूटने के तरीके को बदल दिया। मेरी राय में यह उत्परिवर्तन गोमांस को भी प्रभावित करता है और यह मवेशियों की यूरोपीय नस्लों में पाया गया, विशेष रूप से बोस बाल में। मवेशियों में मूल बीटा केसीन प्रोटीन A2 प्रकार का था जो अभी भी कुछ पारंपरिक मवेशी नस्लों जैसे अफ्रीकी और एशियाई बोस इंडिकस मवेशियों में पाया जा सकता है, जैसा कि ग्वेनसे और जर्सी गायों जैसी कुछ बोस टॉरस नस्लों में होता है। बकरी के दूध में आमतौर पर गाय के दूध और भेड़ के दूध की तुलना में अल्फा एस 1 कैसीन का अनुपात कम होता है। कुछ बकरी की नस्लें बहुत कम या शून्य अल्फा एस 1 कैसीन के साथ भी दूध का उत्पादन करती हैं। बकरी के दूध में अल्फा एस 2 कैसीन की मात्रा आमतौर पर अल्फा एस 1 कैसीन से अधिक होती है, जो बकरी के दूध को विशिष्ट गुण प्रदान करती है और कुछ लोगों के लिए इसे पचाना आसान बनाती है। भेड़ के दूध में अल्फा एस 1 कैसीन सामग्री आमतौर पर बकरी के दूध की तुलना में अधिक होती है, लेकिन यह नस्लों के बीच भिन्न होती है। अल्फा एस 2 कैसीन सामग्री भी मौजूद है, लेकिन अल्फा एस 1 कैसीन और अल्फा एस 2 कैसीन के बीच सटीक अनुपात भेड़ की नस्ल और प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकता है। गाय के दूध में आमतौर पर बकरी के दूध की तुलना में अल्फा एस 1 कैसीन का उच्च अनुपात होता है, जब अल्फा एस 1 कैसीन की सामग्री नस्लों के बीच भिन्न होती है। उदाहरण के लिए होल्स्टीन गायों में आमतौर पर जर्सी गायों की तुलना में अल्फा एस 1 कैसीन की मात्रा अधिक होती है। अल्फा एस 2 कैसीन सामग्री गाय के दूध में भी मौजूद होती है, लेकिन अल्फा एस 1 कैसीन और अल्फा एस 2 कैसीन के बीच का अनुपात गाय की नस्ल और आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। तर्क से पता चलता है कि बकरियां बेहतर हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बकरियों को पालना आसान होता है और मनुष्य का इतिहास भी बकरियों के साथ था। नीतिवचन 27 वेदी, और जब विज्ञान और तर्क सहमत होते हैं तो चीजों की सच्चाई की संभावना अधिक होती है। एक शेफ का रेस्तरां आहार में तैयारी की विधि है, सामग्री क्या मायने रखती है? यद्यपि तैयारी की विधि हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होती है, कुछ प्रक्रियाएं जैसे अनाज में अम्लीकरण और किण्वन विषाक्त पदार्थों को खत्म करने के लिए आवश्यक हैं। एक ही परिवार के खाद्य संयोजनों का पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपस्थिति के आधार पर पाचन बदल सकता है। उदाहरण के लिए मांस या मछली के प्रकार एक साथ समझ में आते हैं। रुचिकर रेस्तरां अक्सर अपने व्यंजनों के पोषण संबंधी परिणामों पर विचार किए बिना स्वाद और बनाने को प्राथमिकता देते हैं, विभिन्न सामग्रियों और तैयारी तकनीकों का उपयोग करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इष्टतम नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे रेस्तरां में भोजन करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है जहां स्वाद पोषण मूल्य से अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए जब मांस की बात आती है तो मांस की गुणवत्ता और उत्पत्ति, जैसे कि घास खिलाया हुआ मेमना, शेफ द्वारा कच्चे माल को तैयार करने के तरीके से अधिक महत्वपूर्ण होती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से वास्तव में छोटे अज्ञात व्यंजन पसंद नहीं है, इसके विपरीत मुझे बड़े व्यंजन पसंद हैं जिनके बारे में मुझे निश्चित रूप से पता है कि उनमें क्या है। इसमें एक प्रकार का सामान्य आदेश है, आप अपने कुत्ते को जहर दे रहे हैं। पालतू जानवरों को कभी भी मक्का, सोया, गेहूं, जई के संपर्क में नहीं लाया गया जब तक कि खाद्य कंपनियां इन उत्पादों को अपने सूखे भोजन में नहीं डालती। विषाक्त पदार्थों वाले अनाज के सेवन से निम्नलिखित कारणों से कुत्तों और बिल्लियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जोड़ पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। फाइटेट्स जैसे एंटी पोषक तत्व कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे खनिजों से जुड़ सकते हैं, जिससे उनकी जैव उपलब्धता कम हो जाती है और मुश्किल हो जाती है पालतू जानवरों के लिए ये आवश्यक पोषक तत्व अवशोषित करने के लिए। समय के साथ इससे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। जोड़ पाचन तंत्र विकार, कुछ पोषण विरोधी पदार्थ जैसे लैक्टिन पाचन तंत्र की परत को परेशान कर सकते हैं, जिससे उल्टी, दस्त या पेट दर्द जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। यह विशेष रूप से सच है अगर अनाज को कच्चा या अनुचित तरीके से पकाया जाता है। जोड़ एलर्जी और संवेदनशीलता, कुछ पालतू जानवर विशिष्ट अनाज से एलर्जी या संवेदनशीलता से पीड़ित हो सकते हैं, जो पाचन तंत्र में सूजन और परेशानी पैदा कर सकता है। गेहूं और मक्का जैसे अनाज कुत्तों और बिल्लियों के लिए आम एलर्जी कारक हैं। जोड़ सूजन प्रतिक्रिया, कुछ एंटी पोषक तत्व शरीर में सूजन में योगदान कर सकते हैं, जो मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं को खराब कर सकता है या नई समस्याओं के विकास को जन्म दे सकता है। पालतू भोजन निर्माताओं को एंटी पोषक तत्वों में विषाक्त पदार्थों से जुड़े संभावित खतरों के बारे में पता है, लेकिन वे सैल्मन या चिकन की तुलना में बहुत सस्ते हैं। और हाँ, पशु चिकित्सक गलत हैं। अनाज निम्नलिखित अनाज को केवल 48 घंटों के लिए भिगोया जाता है और 48 घंटों के लिए किण्वित किया जाता है घंटे और फिर पकाया जाता है। बाजरा, बाजरा, ज्वार, ज्वार, यारो, एमारेंथ, फोनियो जंगली चावल और कुछ सफेद चावल, मुख्य रूप से एशियाई लोगों के लिए। मैं नहीं मानता कि हम इतने विकसित हो गए हैं कि इन्हें खाने के आदि हो जाएं। अन्य सभी अनाज, उनसे पूरी तरह बचें। जैसा कि पूर्वजों ने गाया और याद किया, आपको अनाज से उनके समस्याग्रस्त विषाक्त पदार्थों को निकालने की आवश्यकता है। अनाज बीज की तरह होते हैं और वे नहीं चाहते कि उन्हें खाया जाए, इसलिए आपको एक ऐसा कार्य करना होगा जिसके लिए वे प्रकृति में तैयार नहीं थे। जानवर भिगोना, मैरिनेट करना और गर्म करना नहीं जानते। बीजों को भिगोने से बीज सोचते हैं कि वे अंकुरित हो जाएंगे और इसलिए विषरण का एक तंत्र सक्रिय हो जाता है। किण्वन के दौरान लैक्टोबैसिली जैसे बैक्टीरिया विषाक्त पदार्थों को तोड़ते हैं, साथ ही खाना पकाने से भी कुछ विषाक्त पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। स्वतंत्र विचार हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वजों ने स्वाद के लिए रोटी नहीं बनाई थी, बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए और रोटी को लंबे समय तक रखने के लिए। आज अधिकांश स्थानों पर जहां गेहूं है, यह आनुवंशिक रूप से भिन्न है और किण्वित नहीं होता है, इसलिए समस्याएं हैं। पशु वसा, हाँ, बीफ बटर एक्स 95 जीसी के कारण समस्याग्रस्त हो सकता है। बकरी का मक्खन वीएक्स 95 जीसी के कारण समस्याग्रस्त हो सकता है और भी, क्योंकि यह वास्तव में दूध से बना एक सांद्रण है। मछली का तेल वीवीवी ओमेगा 3 के कारण एक्सपोजर में मदद करता है। हंस और बत्तख का तेल वी, उनमें लगभग कोई 95 जीसी नहीं होता है और इसलिए सुरक्षित है। वीएक्स गाय का वसा 95 जीसी के कारण समस्याग्रस्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंसानों को वसा का स्वाद पसंद है, ये रक्त शर्करा नहीं बढ़ाता है और सबसे ऊर्जावान रूप से कुशल है। ध्रुव में केवल मछली और जानवरों के आहार पर रहने वाली जनजातियां उच्च रक्तचाप या हृदय की किसी भी समस्या से पीड़ित नहीं हैं। यह निर्णायक प्रमाण है कि पश्चिमी समाज में पशु वसा कोई समस्या नहीं है। ये कुछ जानवरों के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है। तेल और वनस्पति वसा, किसी भी पौधे के तेल के लिए XXX जैतून का तेल, X कैनोला तेल और अन्य वनस्पति वसा वास्तव में पौधों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों के केंद्रित रूप हैं। इन तेलों को हाल के दशकों में ही हमारे आहार में शामिल किया गया है और मनुष्यों ने ऐतिहासिक रूप से बड़ी मात्रा में इन पदार्थों का सेवन नहीं किया है। अध्ययनों से पता चलता है कि ये विषाक्त पदार्थ मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा वनस्पति तेल को गर्म करने से इसकी विषाक्तता और भी बढ़ सकती है। इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि कई लोग जैतून के तेल को एक स्वस्थ भोजन मानते हैं। वास्तव में स्वस्थ भोजन या सुपर फूड जैसी कोई चीज नहीं होती है, बल्कि कुछ खाद्य पदार्थ कुछ लोगों या परिस्थितियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। जहां तक जैतून के तेल का सवाल है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कच्चे और कड़वे जैतून से बना है, जिसमें महत्वपूर्ण मात्रा में विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं। ऐसे में जैतून के तेल का उपयोग कम मात्रा में करने की सलाह दी जाती है, लेकिन किसी भी मामले में जानवरों के तेल का चयन करना बेहतर है जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त हैं। हृदय रोगों सहित संवहनी रोग चीनी और वनस्पति तेलों से बढ़ते हैं, न कि पशु वसा और तेलों से। उनमें से एक कारण छोटे प्रोटीन हैं जो मुख्य रूप से पौधों और अनाजों में पाए जाते हैं, जो उन्हें जानवरों द्वारा खाए जाने से रोकते हैं। लेक्टिन और रक्त वाहिकाओं को होने वाले नुकसान पर एक लेख। वेसेन पॉल। जैतून का तेल, विश्व के क्लासिक तेलों का इतिहास, उत्पादन और विशेषताएं। तेलों के उपयोग पर एक अध्ययन। पूरे इतिहास में जैतून के तेल के कई प्रलेखित उपयोग रहे हैं। सभी संस्कृतियों में जैतून का उपयोग मुख्य रूप से दीपक ईंधन के रूप में किया जाता था और यही इसका सबसे बड़ा मूल्य था। कई समारोहों में जैतून के तेल का उपयोग शामिल था, जिसमें राजपरिवार, योद्धाओं और आम जनता से लेकर धार्मिक लोगों का अभिषेक भी शामिल था। मसीहा शब्द का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। सुगंधित जैतून के तेल का उपयोग देवताओं को प्रसाद चढ़ाने, बीमारियों को ठीक करने के लिए मरहम के रूप में और त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाने के लिए किया जाता था। यूनानियों ने पारंपरिक रूप से एथलीट की त्वचा पर जैतून का तेल डाला और फिर पसीने और धूल से इसे साफ कर दिया। प्रतियोगिता। इसका उपयोग साबुन बनाने और मृतकों को पवित्र करने के लिए भी किया जाता था। मानव उपभोग के लिए जैतून के तेल के उपयोग के बहुत कम मौजूदा दस्तावेज हैं। मछली, जैसे समुद्री मछली वी परिरक्षकों के बिना पानी में, सार्डिन वी परिरक्षकों के बिना पानी में, ट्यूना वी समुद्री भोजन वी तालाबों से मछली, अतीत में खाई जाने वाली मछलियों के प्रकारों के करीब। आज हमारे पास मौजूद मांस के प्रकारों की तुलना में समुद्र या तालाबों में नहीं बल्कि जंगल में पकड़ी गई मछलियों की सबसे ज्यादा सिफारिश की जाती है। समुद्री मछली खाने की सलाह दी जाती है, अधिमानतः उच्च वसा प्रतिशत वाले लोग और तालाब की मछलियों से बचते हैं। तालाब की मछलियों को आमतौर पर अनाज, सोया और अन्य पदार्थ खिलाए जाते हैं जो मछली के लिए प्राकृतिक नहीं है, जिससे वे कम पौष्टिक हो जाती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जंगली पकड़ी गई मछली सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और आयोडीन के उच्च स्तर सहित कई फायदेमंद पदार्थ होते हैं। मनुष्य मछली खाने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं और उन्हें बिना किसी दुष्प्रभाव के कच्चा भी खाया जा सकता है, जो दर्शाता है कि वे मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा मछली से एलर्जी अपेक्षाकृत दुर्लभ है और एक निश्चित भोजन से एलर्जी अक्सर इसकी विषाक्तता का संकेत देती है। साथ ही अनाज और मछली को एक ही भोजन में मिलाने के बजाय अलग अलग खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी पाचन संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और एक साथ खाने पर उनका अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है। संक्षेप में, इसकी उच्च पोषण सामग्री के कारण समुद्री मछली के सेवन की सिफारिश की जाती है और तालाब में पाली गई मछली की तुलना में जंगल में पकड़ी गई मछली को प्राथमिकता दी जाती है। मछली से एलर्जी दुर्लभ है और मछली को कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है। इष्टतम पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए अनाज और मछली को अलग अलग खाने की भी सिफारिश की जाती है। मांस, हाँ, हमारे लिए शाकाहारी खाना अच्छा है, न कि मिश्रित खाने वाले जो चरागाहों में पले बढ़े हैं, चिकन, बत्तख, हंस, बकरी, भैंस, एल्क, हिरण। मानव शरीर वसा को तोड़ने के लिए मांस आधारित आहार के लिए बनाया गया है। आप इसे 5 अलग अलग अंगों में देख सकते हैं जिन्हें वसा को तोड़ने के लिए एक साथ काम करना पड़ता है। यहां तक कि जो गाय घास खाती हैं, उनका अंतिम उत्पाद जो उनके रक्त में अवशोषित होता है वो फैटी एसिड होता है जो उनकी आंतों में बैक्टीरिया द्वारा फाइबर से बनता है। वे घास चबाते हैं और लार मिलाते हैं ताकि उनके आंत के बैक्टीरिया फाइबर को फैटी एसिड में तोड़ने के लिए एक नई सतह बना सकें। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसा खाने से पाचन आसान हो जाता है। मुर्गी या जानवरों को खाने से कम महत्व देने के लिए जो सोया, जौ और मक्का जैसे अनाज खाते हैं, मूल नियम यह है कि यदि पैकेज पर यह नहीं लिखा है कि उन्होंने केवल घास खाई है, तो गाय या मुर्गी को ऐसा भोजन मिला जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। इजराइल में तो ये बिल्कुल भी नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन अमेरिका में इसे लिखना बहुत आम है। तभी आप खरीदें कि वे इन अनाजों को खाने के लिए नहीं बने हैं और इन अनाजों के कुछ विषाक्त पदार्थ उनके मांस के माध्यम से हमारे पास आते हैं। जानवरों के आंतरिक अंग और वसा सबसे अधिक पौष्टिक अंग हैं। यह महत्वपूर्ण है कि अनाज और कार्बोहाइड्रेट को मांस के साथ न मिलाएं और उन्हें एक दूसरे से कई घंटों की दूरी पर अलग अलग खाएं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम बकरियों को खाने के लिए अनुकूलित हैं क्योंकि हजारों वर्षों से हम उनके साथ बड़े हुए हैं। ऐसा सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी पुस्तक कहती है बकरी को उसकी माँ के दूध में न पकाएं। इसका तात्पर्य विभिन्न प्रकार के भोजन को एक साथ न मिलाने से है। हम लाखों वर्षों से इसी तरह से जी रहे हैं और केवल आधुनिक समय में ही हम हर चीज में से हर चीज को मिलाते हैं। उन मानव समाजों का वर्णन जो अधिकतर मांस खाते थे, जो मांस वे एक समय खाते थे और पालतू जानवरों के मांस में अंतर है। समुद्री मछलियों के विपरीत जो वैसी ही होती हैं जैसी उन्होंने एक बार खाई थीं। और मतभेदों के बावजूद यह अभी भी काफी करीब है, आप बिल्कुल वैसा नहीं खा सकते जैसा शिकारियों ने खाया। पुरापाषाण काल की आबादी मुख्य रूप से पशु प्रोटीन शिकार मांस का सेवन करती थी, आमतौर पर शाकाहारी जानवरों जैसे कि झुंड में रहने वाले मवेशी जिनमें हिरण, बाइसन, घोड़े और मैमथ शामिल थे। इस मांस का पोषण प्रोफाइल आधुनिक सुपरमार्केट में उपलब्ध मांस से काफी अलग है। आधुनिक मांस में चमड़े के नीचे के वसा ऊतक, संयोजी ऊतक सतहों और मांसपेशियों के भीतर फाइबर के रूप में बहुत अधिक वसा होती है। लगातार भोजन की आपूर्ति और कम शारीरिक गतिविधि के कारण पालतू जानवर हमेशा अपने जंगली समकक्षों की तुलना में मोटे होते हैं। हाल की भोजन विधियों और पालन पोषण ने उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए वसा की मात्रा को और बढ़ा दिया है, नर्म और रसदार। परिणामस्वरूप आज वध किए गए पशुओं में वसा का प्रतिशत 25-30% या उससे भी अधिक तक पहुंच सकता है। इसके विपरीत 15 शाकाहारी अफ्रीकी पशु प्रजातियों के एक अध्ययन में उनका औसत वसा प्रतिशत 4% पाया गया। पालतू जानवरों में न केवल वसा अधिक होती है बल्कि इसकी संरचना भी काफी अलग होती है। इस अंतर का मुख्य कारण वह मिश्रण है जो पालतू जानवरों को दिया जाता है, लेकिन अमेरिका और अन्य विकसित देशों में आप ऐसे जानवरों से मांस प्राप्त कर सकते हैं जो केवल घास खाते हैं, मिश्रण नहीं। जंगली जानवरों की वसा में पालतू जानवरों की वसा की तुलना में 5 गुना अधिक पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। इसके अलावा पशु वसा में एक महत्वपूर्ण मात्रा लगभग 4% इकोसेपेंटेनोइक एसिड ईपीए शामिल होती है, जो एक लंबी श्रृंखला वाला ओमेगा-3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो एथेरोस्क्लेरोसिस और घातक बीमारियों के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभावों के लिए जाना जाता है। पालतू गोमांस में ईपीए की केवल थोड़ी मात्रा होती है। जंगली जानवरों के मांस में पालतू जानवरों के मांस की तुलना में प्रति यूनिट वजन कम कैलोरी और अधिक प्रोटीन होता है, हालांकि उनके मांसपेशियों के ऊतकों की अमीनो एसिड संरचना समान होती है। चूंकि वसा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मांसपेशियों के ऊतकों के समान होती है, इसलिए जंगली जानवरों के मांस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सुपरमार्केट के मांस से बहुत अधिक भिन्न होने की उम्मीद नहीं है। एक पवित्र गाय का वध करें। गाय के मांस के साथ एक समस्या है क्योंकि NoGC5 सबसे अधिक पाया जाता है गोमांस में, इसलिए यह मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। आज की औद्योगिक गाय को 10,000 साल पहले पालतू बनाई गई बकरियों की तुलना में मनुष्य के लिए अपेक्षाकृत हाल ही में खोजा गया था। गाय में सुधार हुआ है और यह बकरी उद्योग की तुलना में एक संपूर्ण उद्योग है, इसलिए गाय पर नहीं बल्कि बकरियों पर दाम लगाना बेहतर लगता है। बड़े उद्योगों के सभी खाद्य पदार्थ, चिकन, अंडे, सोया, गेहूं, चावल और दूध हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए शायद गोमांस भी। भारतीय सही कह रहे हैं कि वे गायों को पवित्र मानते हैं। NoGC5 ग्लाइकोलन्यूरामिनिक एसिड एक प्रकार का सियालिक एसिड है, एक चीनी अणु जो गाय, भेड़ और बकरियों सहित कई स्तनधारियों में कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। हालांकि विकास के दौरान CMAH जीन में आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण मनुष्य स्वाभाविक रूप से NoGC5 को संश्लेषित नहीं करते हैं। इसके बजाय मनुष्य NoGC5 एसिड NoGC5 नामक एक समान सियालिक एसिड का उत्पादन करते हैं जो अधिकांश प्रकार के मांस में मौजूद होता है। यह एक समस्याग्रस्त पदार्थ है जब हमारी आंतें घायल हो जाती हैं आबादी के एक बड़े हिस्से में, और संभवतः तब भी जब वे घायल नहीं होती हैं। यह मुख्य रूप से मवेशियों में वसा और आंतरिक अंगों में पाया जाता है। गोमांस में यह उच्च सांद्रता में मौजूद होता है, भेड़ और बकरियों में भी यह मौजूद होता है, हालांकि कम मात्रा में। हालांकि विज्ञान इस बारे में निर्णायक नहीं है, लेकिन मेरी राय है कि यदि संभव हो तो लाल मांस बीफ से बचना बेहतर है। एक अध्ययन जिसमें जानवरों में NoGC5 के प्रभाव की जांच की गई मनुष्य सैकड़ों हजारों वर्षों से NoGC5 के संपर्क में है। उदाहरण के लिए मसाई जनजाति पर एक अध्ययन किया गया जो मवेशियों और बकरियों के मांस, दूध और खून पर जीवित रहती है, और इसमें कोई कैंसर नहीं पाया गया। 2 मासाई जनजातियों के बीच ये पाया गया कि मांस न खाने वाली संबंधित जनजाति की तुलना में उपास्थि क्षरण की समस्याएं अधिक थीं। यह एक संकेत हो सकता है कि लाल मांस जोड़ों की समस्या पैदा कर सकता है। स्तनधारियों में जो NoGC5 का उत्पादन करते हैं, ये सिग्नलिंग, आसंजन और कोशिका पहचान सहित विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। सियालिक एसिड जैसे NoGC5 कभी कभी शामिल होते हैं। कोशिकाओं और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया को बंद करें और आवश्यक जैविक कार्यों में योगदान दें। मनुष्यों में NoGC5 का सेवन लाल मांस और मुख्य रूप से गाय के दूध के उत्पादों के माध्यम से किया जाता है। अंतर्ग्रहण के बाद शरीर द्वारा इसे संश्लेषित करने में असमर्थता के बावजूद NoGC5 ऊतकों में अवशोषित हो जाता है।
प्रतिरक्षा प्रणाली नॉय 5GC को एक विदेशी पदार्थ के रूप में पहचानती है और नॉय 5GC के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती है। इस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से सूजन हो सकती है, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि कैंसर, हृदय रोग और अन्य पुरानी स्थितियों में भूमिका निभाने के लिए परिकल्पित है। इस बात के सबूत हैं कि नॉय 5GC का जोड़ों पर प्रभाव पड़ सकता है, जो योगदान दे सकता है सूजन और जोड़ों से संबंधित स्थितियों के लिए। मेरा दावा है कि यह मनुष्यों के लिए कुछ हद तक समस्याग्रस्त पदार्थ है। मनुष्यों में विषाक्त पदार्थों का कारण बनता है। जब हमारी आंतें अधिक घायल हो जाती हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है, और जो लोग कम जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है, एशियाई के लिए उदाहरण के लिए जो लोग गाय के संपर्क में नहीं आए, जैसे कोई श्वेत व्यक्ति चावल के संपर्क में नहीं आया। इसलिए मैं गाय से आने वाले उत्पादों से संबंधित सभी चीजों को कम करने की सिफारिश करूंगा। पोषक तत्वों की खुराक होने पर खनिज और विटामिन की आवश्यकता किसे है? ये समझना महत्वपूर्ण है कि खनिज और विटामिन की कमी एक लक्षण है, समस्या नहीं। समस्या को पोषक तत्वों की खुराक से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह केंद्रीय कानून का खंडन करता है। आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते हैं और इसके साथ चालाक होना बहुत खतरनाक है। केवल स्वतंत्र रूप से खाने से अभिव्यक्ति को सही करना संभव है। किण्वित अनाज, मांस, मछली, बकरी के दूध के उत्पाद और पके फल। पोषक तत्वों की खुराक उसी तरह से अवशोषित नहीं होती है जैसे वे हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन से अवशोषित होती हैं, और खनिजों के सैकड़ों उपप्रकार और रूप होते हैं। उदाहरण के लिए, पौधों से प्राप्त लौह जानवरों से प्राप्त लौह की तुलना में बहुत आंशिक रूप से अवशोषित होता है। जो जानवर घास खाते हैं उनमें उन जानवरों की तुलना में बहुत अधिक खनिज और विटामिन होते हैं जो अनाज खाते हैं और उन्हें मोटा बनाने के लिए मिश्रण खाते हैं। ये सभी सुपरमार्केट में बेचे जाने वाले जानवर हैं। यदि आप ऐसा भोजन खाते हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त है, मुख्य रूप से पशु भोजन और फलों पर आधारित, पोषक तत्वों की खुराक की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकांश विटामिन और खनिज की कमी की समस्याएं सब्जियों, पत्तियों, नट्स, जड़ों, कच्चे फलों, मशरूम और पत्तियों में मौजूद खनिजों के अवशोषण अवरोधकों, विषाक्त पदार्थों के कारण होती हैं। ये विकर्षक जानवरों को इन पौधों को खाने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारे लिए आवश्यक अधिकांश विटामिन और खनिज घास खाने वाले जानवरों के मांस और जंगली मछलियों में पाए जाते हैं। आमतौर पर जिन खनिजों की कमी होती है, आयोडीन, आयरन, B12, जिंक, ओमेगा-3, Q10 ज्यादातर पौधे आधारित आहार, बीज, अनाज, सब्जियां, पत्ते, मेवे और मशरूम के कारण होते हैं। मेरी राय में विटामिन डी की खुराक है अनावश्यक, क्योंकि विटामिन डी पशु वसा में पाया जाता है और आपको इसे वहीं से प्राप्त करना चाहिए जिसकी आपको बहुत कम आवश्यकता है। ये सच है कि सूरज के संपर्क में आने पर शरीर विटामिन डी का उत्पादन करता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा खुद को धूप से बचाने के लिए होता है, न कि विटामिन डी की कमी के लिए। प्रोबायोटिक संभवतः पूरी तरह से अनावश्यक हैं, क्योंकि आंतों के बैक्टीरिया के लिए सही भोजन के बिना वे मर जाएंगे, और अध्ययनों से पता चला है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप क्या खाते हैं जो आंतों के बैक्टीरिया को प्रभावित करेगा। आधुनिक दुनिया में अधिकांश लोगों में पकड़ी गई छोटी मछली खाने के कारण आयोडीन की कमी होती है। जंगली में तालाब की मछलियों में थोड़ी मात्रा में ओमेगा-3 होता है, क्योंकि तालाबों में लगभग कोई शैवाल नहीं होता है और मछलियों को शैवाल खाने से ओमेगा-3 मिलता है, भूमि का पुनर्संसाधन। इसराइल में आयोडीन की कमी के लिए कोई अच्छा परीक्षण नहीं है और न ही उपयुक्त आयोडीन की खुराक। रासायनिक पदार्थों और समान फसलों के उपयोग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है और आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली सब्जियों और फलों की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं सब्जियां बिल्कुल नहीं खाता हूं। मिट्टी के क्षरण के कारण हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन और बहुत कुछ की कमी हो जाती है। नल के पानी में आमतौर पर आवश्यक खनिजों की कमी होती है, इसलिए मिनरल वाटर पीना बेहतर है। अगर आपको डर है कि आप जो खाना खाते हैं या जहां आप रहते हैं वहां चींटियां, कीड़े, धूल, मिट्टी और प्राकृतिक चीजें हैं, तो शांत रहें। वे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसके विपरीत वे हमें मजबूत भी करते हैं। उनसे परहेज करने से सभी प्रकार की एलर्जी होती है, न कि बीमारियां, जैसा कि आप डरते हैं। अधिकांश लोगों के शरीर में आयोडीन की कमी होती है और यह कमी थकान, कब्ज और अवसाद सहित समस्याओं का कारण बनती है। कमी को ठीक करना है थायराइड ग्रंथि में असंतुलन का इलाज करने के सबसे आसान तरीकों में से एक। आयोडीन की कमी खेती और छिड़काव वाली कृषि भूमि के बार बार उपयोग और समुद्री शैवाल और समुद्री मछली खाने की कमी के कारण होती है। विटामिन और खनिजों की एक निश्चित दैनिक मात्रा के लिए सिफारिशें RDA मानती हैं कि लोग पश्चिमी आहार पर हैं, जहां कार्बोहाइड्रेट बहुमत में है उनका आहार। ये उन लोगों के लिए सही नहीं है जो इंसानों के लिए उपयुक्त खाना खाते हैं। जानवरों के भोजन और फलों में खनिज और विटामिन का अवशोषण पौधों की तुलना में बहुत अधिक होता है, और मांस और मछली के आंतरिक अंगों में सबसे आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं, जिन्हें अन्य स्रोतों यकृत, मस्तिष्क, हृदय आदि से प्राप्त करना मुश्किल होता है। जितना संभव हो उतना कम मिश्रण करना और पशु भोजन को पौधों के भोजन से अलग करना बेहतर है। कार्बोहाइड्रेट से वसा और प्रोटीन को अलग करें। पूर्वजों ने इसी तरह खाया। जो भोजन प्राकृतिक दिखता है वो सबसे खतरनाक में से एक है, क्योंकि वो भ्रामक होता है। उदाहरण के लिए आलू, चावल, बीन्स, तरबूज, जिनकी अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि वे लेक्टिन से भरपूर होते हैं। प्राकृतिक भोजन पर्याप्त नहीं है क्योंकि आपको खाना पड़ता है, उदाहरण के लिए पके हुए फल, साथ ही कुछ सब्जियां, लेकिन उनके शेल्फ जीवन के विस्तार के कारण उन्हें कच्चा तोड़ लिया जाता है और अप्राकृतिक तरीके से पकाया जाता है, ताकि उनका प्राकृतिक पदार्थ लेक्टिन, जो उन्हें कीटों द्वारा समय से पहले खाने से बचाता है, बड़ी मात्रा में रहता है। खाना पकाने, गर्म करने और किण्वन से आमतौर पर लेक्टिन की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन पर्याप्त नहीं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्प मात्रा किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन हम में से कुछ के लिए यह अधिक गंभीर रूप से और विभिन्न लक्षणों के साथ प्रभावित करती है। कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का मिश्रण न करें और भोजन के प्रकारों को बिल्कुल भी न मिलाएं। प्रकृति में वे ऐसा नहीं करते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं। केवल KFC में मिश्रण से लोगों में नाराजगी होती है, खासकर अगर वसा वनस्पति है या पौधे के विषाक्त पदार्थ नाराजगी का कारण बनते हैं। ध्यान दें कि जब आप केवल मांस खाते हैं तो कोई नाराजगी नहीं होती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना वसा है। इसके तंत्र को विनियमित करने के लिए हर दिन कम से कम एक बार बिना कार्बोहाइड्रेट, फल, ब्रेड, अनाज आदि के भोजन की सिफारिश की जाती है। शरीर में शुगर और कीटोन्स को नियंत्रित करना। केटोन्स या कीटोन बॉडीज एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर ऊर्जा के लिए वसा को तोड़ने पर पैदा करता है। यह आमतौर पर तब होता है जब ग्लूकोज, कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत, की कमी होती है, जैसे उपवास, कम कार्बोहाइड्रेट का सेवन या लंबे समय तक व्यायाम के दौरान। जब ग्लूकोज का स्तर कम होता है तो लीवर शरीर और मस्तिष्क के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में फैटी एसिड को कीटोन में तोड़ देता है। कीटोन बॉडी के तीन मुख्य प्रकार हैं, एसिटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट BHB और एसीटोन। केटोन के उत्पादन की प्रक्रिया केटोजेनेसिस कम ग्लूकोज उपलब्धता के लिए एक सामान्य चयापचय प्रतिक्रिया है। हालांकि उच्च कीटोन का स्तर कुछ स्थितियों में खतरनाक हो सकता है, जैसे कि अनुपचारित मधुमेह। इस मामले में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA नामक जीवन घातक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। केटोसिस की स्थिति, जिसमें केटोन्स ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, केटोजेनिक आहार का आधार है। इन आहारों में वसा की मात्रा अधिक और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, और इनका उद्देश्य वजन घटाने, मानसिक फोकस में सुधार और अन्य संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए केटोसिस को प्रेरित करना और बनाए रखना है। एक समय अधिकांश भोजन कार्बोहाइड्रेट के बिना होते थे, और आज सभी भोजन में हमेशा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सिर्फ आदत की बात है। आधुनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट के साथ वसा और प्रोटीन का सेवन हमारे शरीर के सिस्टम को भ्रमित करता है और मस्तिष्क को मजबूत संकेत भेजता है। प्रकृति में कोई संयोजन नहीं है और न ही ऐसी कोई चीज थी, इसलिए हमारा मस्तिष्क इस पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है। हजारों वर्षों के विकास क्रम में उन्होंने मछली खाई और फिर कुछ घंटों के बाद फल खाया। एक ही भोजन में चावल के साथ मछली और रोटी के साथ जैतून का तेल नहीं था। कारण इस तथ्य में निहित है कि इस मिश्रण में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त में शर्करा बढ़ जाती है, एक दुर्लभ घटना जिसे शरीर अच्छी तरह से निपट नहीं पाता है, और एक ऐसी घटना जिसे भोजन इकट्ठा करने और शिकार करने में स्वीकार नहीं किया जाता है। रक्त शर्करा परीक्षण से स्वयं की जांच करें। जब कार्बोहाइड्रेट संसाधित होते हैं और वसा संसाधित और अप्राकृतिक होती है, तो वसा और रक्त शर्करा चरम सीमा तक बढ़ जाती है। इसकी पुष्टि ये देखकर की जा सकती है कि मधुमेह रोगियों में धमनी काठिन्य का प्रतिशत बहुत अधिक होता है, यानी ज्यादातर समय उच्च रक्त शर्करा वाले लोग। इस अध्ययन में आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जो पहले की तरह ही रहते हैं और बुढ़ापे में उन्हें हृदय संबंधी लगभग कोई समस्या नहीं होती है। औद्योगिक खाद्य कंपनियां इस बग, चिप्स, पेस्ट्री, चॉकलेट और लगभग हर चीज में तेल मिलाना को लक्षित कर रही हैं। स्मूदी और जूस हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। शेक फल से सारी चीनी का आसवन है। जब फल तरल होता है तो हमें चबाना चाहिए, और हम फ्रुक्टोज की इतनी मात्रा के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक और बात जो इस तथ्य का समर्थन करती है कि हमारा शरीर प्रोटीन और वसा के साथ कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं बना है, वो है एक अलग pH वातावरण, जो कार्बोहाइड्रेट बनाम वसा और प्रोटीन को तोड़ने के लिए विभिन्न एंजाइमों के लिए आवश्यक है। वसा और प्रोटीन को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की तुलना में अधिक अम्लता की आवश्यकता होती है,
और निश्चित रूप से आप इन दोनों मूल्यों को एक ही समय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के एंजाइम को किस अम्लता की आवश्यकता है, इसके बारे में यहाँ पढ़ें। खाद्य पदार्थों को मिलाने में पीने का पानी भी शामिल है। भोजन के पास खाने के एक घंटे बाद या एक घंटे पहले पीना बेहतर होता है। इस पर कोई अध्ययन या विज्ञान नहीं है, इसलिए मैं स्वतंत्र विचार करता हूं और मानता हूं कि पूर्वजों के पास हर समय पानी उपलब्ध नहीं था और इसलिए हम खाने के दौरान पानी न पीने के लिए विकसित हुए। गैस्ट्रिक रस को पतला करके अम्लता को कम करना समझ में आता है। आज स्फाग्नम भोजन के लिए कोई प्राकृतिक विकल्प क्यों नहीं है? कृषि क्रांति के बाद से पिछले 10,000 वर्षों से गेहूं, दूध, जड़ें आदि के नए आहार से निपटने के लिए एक प्राकृतिक विकल्प था, लेकिन समस्याएं भी हैं। उन वर्षों में हर किसी को एक जैसा भोजन नहीं मिलता था और हाल के वर्षों में ही सभी मनुष्यों को सभी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हुए हैं। श्वेत व्यक्ति चावल के संपर्क में नहीं थे और एशियाई लोग गेहूं के संपर्क में नहीं थे। अश्वेतों को गेहूं और दूध के संपर्क में नहीं लाया गया और वास्तव में ये देखा गया है कि वे गेहूं की तुलना में दूध और मेद के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। एक ऐसा आहार जो आमतौर पर बच्चे पैदा करने की उम्र के बाद मर जाता है, जैसे गेहूं, फलियां, आलू, धूम्रपान आदि, लेकिन पीड़ा का कारण पहले विकास को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ये समझना भी मुश्किल है कि यह मेरी पीढ़ी एक व्यक्ति के लिए अनुकूलित नहीं है। बीते वर्षों में छोटे शिकारियों की औसत आयु 40 वर्ष थी और शहरवासियों की 50, इसलिए आज की बीमारियां, जो वास्तव में विषाक्तता का एक रूप हैं, उपरोक्त आहार से असंबंधित लगती हैं। ये आबादी अक्सर आज की बीमारियों के बजाय संक्रमण और हिंसा से मरती है। केवल यौम किपुर पर उपवास मानव विकास की विशेषता भोजन की कमी के कई मामलों से थी। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कैलोरी प्रतिबंध और उपवास से जानवरों में दीर्घायु बढ़ सकती है। मैथसन एट अल 2017, मिशेल एट अल 2016। हमारी अनुकूली चयापचय प्रक्रियाओं के कारण मनुष्य कई हफ्तों तक भोजन के बिना भी जीवित रहने में सक्षम है। कुछ मामलों में उपवास को कुछ चिकित्सीय स्थितियों के इलाज में मदद करने के लिए दिखाया गया है। डी काबो और मैथसन 2019। हालांकि हमारे शरीर को ये संकेत देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे कब पोषण की आवश्यकता है और कब वो खाना नहीं चाहता है, इसलिए इन संकेतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हालांकि उपवास से कुछ लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इससे अनावश्यक मानसिक परेशानी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जीवन को 3 दिनों तक बढ़ाने के लिए 3 दिनों का उपवास कोई लाभकारी समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप 3 दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। पोषण और स्वास्थ्य को अनुकूलित करने के लिए एक अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण में खाने की समय सीमा या आंतरायिक उपवास को लागू करना शामिल हो सकता है। गैबेल एट अल 2018। यह विधि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हुए और अत्यधिक मानसिक तनाव से बचते हुए छोटी अवधि के उपवास का अनुभव करने की अनुमति देती है। 10 घंटे तक के खाने के समय के साथ दिन में 2 बार भोजन। आप तर्क का उपयोग कर सकते हैं और इसके अलावा खुद पर जांच कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे आरामदायक क्या लगता है। हम मैदानी क्षेत्र की कुछ भारतीय जनजातियों में दिन में 2 बार बड़े भोजन करना पारंपरिक था, एक सुबह और एक शाम को। आमतौर पर इसकी पूर्ति पूरे दिन छोटे छोटे स्नैक्स से की जाती थी। ये प्रथा आंशिक रूप से उनकी खानाबदोश जीवन शैली से प्रभावित थी, जो शिकार पर आधारित थी और उन्हें अपने भोजन सेवन में गतिशील और लचीले होने की आवश्यकता थी। इसी तरह अफ्रीका में कुछ स्वदेशी समुदायों जैसे मासाई में 2 बड़े भोजन खाने का पैटर्न है, दिन, एक सुबह और एक शाम। मासाई आहार में परंपरागत रूप से मुख्य रूप से दूध, मांस और मवेशियों का खून शामिल होता है। हॉक का नियम, खुद पर जांच करें। लाभ के लिए कानूनों में हॉक का नियम है, जब मैं खुद को देखता हूं तो मुझे सबसे अधिक आराम मिलता है और मुझे स्वाभाविक लगता है कि वे 2 बड़े हैं एक दिन में भोजन। मैं आमतौर पर एक दिन में 2 बार भोजन करता हूं, एक सुबह 6 बजे और दूसरा दोपहर के 2 बजे। ये सटीक नहीं है, लेकिन आमतौर पर बड़े भोजन, छोटे नहीं। आमतौर पर सीधे ओवन से ली गई खमीर वाली टैफ ब्रेड होती है। मैंने देखा है कि जब मैं बहुत सारे छोटे भोजन खाता हूं तो मैं सतर्क और ऊर्जावान महसूस नहीं करता हूं। आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि खाने का एक फायदा है प्रतिदिन 10 घंटे तक, मान लीजिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। दिन में 2-3 सांद्र भोजन खाएं और भोजन के बीच 5-6 घंटे प्रतीक्षा करें। निश्चित रूप से सांद्रित भोजन में भोजन के बीच का इंतजार वो समय है जब पेट खाली हो जाता है। इसके अलावा विज्ञान से पता चलता है कि जब आप बिस्तर पर जाने से कम 2 घंटे पहले खाना नहीं खाते हैं। तार्किक रूप से सोचें कि आप कैसे खाते थे। क्या आपको लगता है कि आपने पूरे दिन खाया? यह महत्वपूर्ण है कि कम से कम 4 घंटे पहले खाना ना खाएं, आप सो जाओ। इस तरह नींद और पाचन बहुत बेहतर होगा। प्राचीन लोग भी ऐसा करते थे।
अमेरिका में भारतीयों के साथ रहने वाले एक व्यक्ति की गवाही, ये ज्ञात है कि वे दिन में दो बार भोजन करते थे।
भारतीयों के बीच मेरा जीवन, जॉर्ज कैटलिन। उनकी गवाही के अनुसार वे भव्य रूप से निर्मित, सीधे और सफेद और सीधे दांतों वाले खुश थे, बिना टूथपेस्ट के, भैंस के मांस, मकई और फलों पर रहते थे।
ये निस्संदेह वे भारतीय हैं जो आधुनिकीकरण के संपर्क में नहीं आए।
एक तार्किक कारण भी है, स्वतंत्र सोच में हम तर्क के साथ तथ्यों की तलाश करते हैं, न कि केवल ये सोचते हैं कि ओह, भारतीयों ने इसी तरह खाया। तर्क ये है कि जब हम खाते हैं तो हम आंतों को चोट पहुंचाते हैं, जैसे दौड़ने में जब आप मांसपेशियों और जोड़ों को चोट पहुंचाते हैं और आपको उन्हें ठीक होने के लिए समय देने की आवश्यकता होती है।
भोजन जितना अधिक प्रसंस्कृत और अप्राकृतिक होता है, वे उतने ही अधिक घायल होते हैं।
खिड़की में भोजन करना अतीत में खाने जैसा है, जब वे भोजन प्राप्त करने और बच्चों के लिए आश्रय की देखभाल करने में व्यस्त थे।
विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा शरीर पूरे दिन खाने के लिए नहीं बना है और हम इसे तब देखते हैं जब उच्च शर्करा का स्तर सभी शरीर प्रणालियों को नुकसान पहुंचाता है।
पूरे दिन खाने का अनिवार्य रूप से मतलब है कि हमारी शर्करा पूरे दिन उच्च रहेगी, खासकर अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलाते हैं।
यहां आप फिर से देखते हैं कि विज्ञान तर्क और अवलोकन से जुड़ता है और फिर एक सुंदर स्वतंत्र विचार आता है।
क्या माता पिता हमेशा दोषी हैं?
माता पिता के लिए एक सुविधाजनक आहार जैसे दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स बिल्कुल स्पष्ट है कि यह लोकप्रिय क्यों है। यह हो सकता है किसी भी समय तैयार किया गया, सामग्री रेफ्रिजरेटर में संरक्षित रहती है और बर्तनों को साफ करना भी आसान होता है।
बेशक ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है और उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।
बिना किण्वित अनाज और गाय का दूध मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है?
जो सिद्ध हो चुका है वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में ना कहने की अंतिम क्षमता होती है, इसलिए बच्चों को उपयुक्त भोजन खिलाने का एकमात्र तरीका है घर पर केवल वही भोजन लाना जो उपयुक्त हो मनुष्यों के लिए।
शरीर आज जीवित रहना चाहता है, कल कम दिलचस्प है।
हमारा शरीर लंबी अवधि के बजाय अल्पावधि में जीवित रहना चाहता है, इसलिए शरीर उन प्रणालियों का समर्थन करने के लिए खनिज और विटामिन जुटाता है जो अल्पकालिक अस्तित्व में योगदान करते हैं।
इसका मतलब यह है कि किसी विशेष खनिज की कमी होने पर लंबी दूरी की प्रणालियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं।
उदाहरण के लिए विटामिन के का उपयोग रक्त के थक्के जमने के लिए किया जाता है, न कि इसकी कमी होने पर धमनी कैल्सिफिकेशन की रोकथाम के लिए।
ब्रूस एम्स के विषय पर शोध और साक्षात्कार।
यह अच्छी तरह से बताता है कि विटामिन और खनिजों की वर्षों की कमी के बाद बीमारियां क्यों शुरू होती हैं, जिनमें से कई विषाक्त पदार्थों के कारण होती हैं जो पौधों में अवशोषण को रोकती हैं।
कोड नाम पौष्टिक फाइबर। आप आहार फाइबर के बिना पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और इसके बिना ये बेहतर है।
वे पचते नहीं हैं और अक्सर खनिजों के अवशोषण को रोकते हैं।
फाइबर रहित इनुइट आहार शायद ही उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
फाइबर उन लोगों की मदद कर सकता है जिनके आहार में पौधों और प्रसंस्कृत भोजन से विषाक्त पदार्थ कम हैं।
ऐसे कोई अध्ययन नहीं है जो बताते हों कि फाइबर हमें किसी चीज में मदद करता है।
ये बिना तार्किक एवं वैज्ञानिक आधार वाली लोक कथा है।
बहुत अधिक फाइबर वाले खाद्य पदार्थों में आमतौर पर बहुत सारे पोषण विरोधी विषाक्त पदार्थ होते हैं, बीन्स, नट्स, अनाज और बहुत कुछ।
फलों में आहार फाइबर रक्त शर्करा के अवशोषण को नियंत्रित करने में मदद करता है और वास्तव में पके फल मनुष्यों के लिए अनुकूलित होते हैं।
एक नए शरीर के लिए नए पदार्थ।
विकासवादी दृष्टिकोण से ये समझ में आता है कि कुछ पदार्थ या खाद्य पदार्थ जो मनुष्य के संपर्क में नहीं आए हैं, ऐतिहासिक रूप से यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
हमारा शरीर उन खाद्य पदार्थों के अनुकूल ढलने के लिए हजारों वर्षों में विकसित हुआ है जो हमारे अधिकांश विकासवादी इतिहास में उपलब्ध रहे हैं।
कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिकरण के कारण होने वाले अचानक आहार परिवर्तन हमारे शरीर की इन नए पदार्थों को कुशलतापूर्वक संसाधित करने और चयापचय करने की क्षमता को चुनौती दे सकते हैं।
आइए उदाहरण के तौर पर फ्रुक्टोज, अनाज और परिष्कृत तेलों पर विचार करें।
जोड़ फ्रुक्टोज। हालांकि फ्रुक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है, लेकिन आधुनिक आहार में फ्रुक्टोज की मात्रा और रूप हमारे पूर्वजों द्वारा खाए जाने वाले सेवन से काफी भिन्न है।
उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप HFCS फ्रुक्टोज का एक अत्यधिक केंद्रित रूप प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में एक आम स्वीटनर बन गया है।
अनुसंधान ने अत्यधिक फ्रुक्टोज की खपत को इंसुलिन प्रतिरोध, मोटापा और गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग NAFLD, कोहेन L और मोरन Y 2017, सॉफ्टिक S, कोहेन DE और जैसी चयापचय समस्याओं से जोड़ा है।
कहन CR 2016।
इन स्वास्थ्य समस्याओं को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि फ्रुक्टोज का चयापचय मुख्य रूप से यकृत में होता है और अतिरिक्त फ्रुक्टोज इस अंग पर अधिभार डाल सकता है, जिससे हानिकारक चयापचय उपोत्पाद और वसा संचय हो सकता है।
जोड़ अनाज। लगभग 10,000 साल पहले कृषि क्रांति के कारण व्यापक विकास हुआ अनाज के दाने, जो आज कई आधुनिक आहारों का एक बड़ा हिस्सा है।
हालांकि विकासवादी दृष्टि से इस अपेक्षाकृत छोटी अवधि ने हमारे पाचन तंत्र को अनाज की खपत के लिए पूरी तरह से अनुकूल होने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया होगा।
उदाहरण के लिए, ग्लूटेन, गेहूं और अन्य अनाजों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन अतिसंवेदनशील व्यक्तियों में ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है, जिससे सीलिएक रोग, लाइमज, कैम, लू, आर, ब्राउनली, जे, लू, बी, जेराड, सी, हो सकता है।
थॉमस के और फसानो ए, 2008।
इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि अनाज की उच्च कार्बोहाइड्रेट सामग्री मोटापे और टाइप 2 मधुमेह, कॉर्डन एल, ईटन एस, बी सेबेस्टियन ए, मान एन, लिंडेबर्ग एस, वॉटकिंस के विकास में योगदान कर सकती है।
बीए और ब्रांड मिलर जे, 2005। जोड़ परिष्कृत तेल। परिष्कृत वनस्पति तेलों के औद्योगिक उत्पादन ने आधुनिक आहार में फैटी एसिड के प्रकार और अनुपात में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया।
ये तेल जैसे सोयाबीन, मक्का और सूरजमुखी तेल ओमेगा-6 पॉलीइनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होते हैं।
ओमेगा-6 और ओमेगा-3 फैटी एसिड का उच्च अनुपात बढ़ती सूजन और पुरानी बीमारियों के उच्च जोखिम से जुड़ा हुआ है,
जैसे हृदय रोग और कैंसर, सिमोपोलोस एपी, 2002।
हमारे पूर्वजों ने संभवतः इन फैटी एसिड का अधिक संतुलित अनुपात खाया होगा, जिससे सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा और सूजन कम होगी।
विकासवादी दृष्टिकोण से मानव आहार में फ्रुक्टोज, अनाज और परिष्कृत तेल जैसे नए या बदलते पदार्थों का तेजी से परिचय हुआ है। नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम।
हमारे शरीर के पास इन परिवर्तनों को अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप इन पदार्थों का सेवन करने पर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुईं।
मैं यही खाता हूं, अनुशंसित प्राचीन रोटी जो मैं हर दिन खाता हूं, केवल सादा आटा और पानी।
2-3 दिन के लिए एक बाउल में छोड़ दें।
30 मिनट के लिए ओवन में रखें। निंजा 175 डिग्री बेहतर है और पतली रोटी है।
आटा गूंथने के बाद आपको नया आटा मिलाने के लिए 3 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खमीर में प्राकृतिक खमीर पहले से ही मौजूद होता है और कुछ ही घंटों में काम कर देता है।
एक दिन बाहर नया आटा डालने के बाद आपको कटोरे को रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए ताकि कोई फफूंद न लगे।
वॉशिंग मशीन में खमीरयुक्त आटे का एक बड़ा कटोरा होता है, जिसमें से आप जब चाहें तब आटा ले सकते हैं और 25 मिनट में ताज़ी रोटी बना सकते हैं।
नाश्ता जो मुझे वास्तव में पसंद है, ओवन में 2-3 केले के लिए, निंजा 25 मिनट के लिए बेहतर है, 175 डिग्री, अंजीर और ब्लूबेरी, ब्लूबेरी, क्लेमेंटाइन और संतरे के साथ बकरी का दही।
भोजन वहाँ नहीं है और प्रकृति में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण और पौधों की जीवित रहने की इच्छा के कारण आपके द्वारा इसे चुनने का इंतजार किया जा रहा है।
बिना प्रयास के भोजन।
मेहनत नहीं होती तो पूछना चाहिए क्यों?
क्या ये जहरीला है?
विभिन्न प्रागैतिहासिक स्थलों पर पाए गए हड्डियों पर छोड़े गए निशानों की जांच से पुरातात्विक रिकॉर्ड से सबूत मिले हैं कि प्रारंभिक होमो सेपियंस और उनके पूर्वजों ने अस्थि मज्जा का सेवन किया था।
हड्डियों पर निशान, जैसे कि कट के निशान, टक्कर के निशान और फ्रैक्चर पैटर्न, प्रारंभिक होमिनिड्स के व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जिसमें उनकी आहार संबंधी आदतें भी शामिल हैं।
हड्डियों पर कटे के निशान से संकेत मिलता है कि हड्डियों से मांस निकालने के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था, जबकि टक्कर के दौरान निशान बताते हैं कि अंदर मज्जा तक पहुंचने के लिए हड्डियां जानबूझकर तोड़ी गईं।
अस्थि मज्जा एक बहुत ही पौष्टिक भोजन स्रोत है, जो वसा, विटामिन और खनिजों से भरपूर है।
अस्थि मज्जा का सेवन प्रारंभिक मनुष्यों के लिए फायदेमंद था, क्योंकि यह जीवित रहने, मस्तिष्क के विकास और समग्र विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता था।
अस्थि मज्जा के उपभोग के साक्ष्य वाले पुरातात्विक स्थलों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं जोड़ स्वाटक्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ये साइट जो लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पूर्व की तारीखें, टक्कर के निशान वाली हड्डियां मिली, जिससे पता चलता है कि प्रारंभिक होमिनिड्स जैसे कि पैरेंथ्रोपस रोबस्ट मज्जा तक पहुंचने के लिए हड्डियों को तोड़ते थे।
जोड़ ओल्डुवाई गॉज, तंजानिया, ये साइट लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले की है, इसमें कट और टक्कर के निशान वाली हड्डियां शामिल हैं, जो दर्शाता है कि होमो की प्रारंभिक प्रजातियां जैसे कि होमो हैबिलिस, संसाधित पशु शव और पहुंच योग्य अस्थि मज्जा।
जोड़ बॉक्स ग्रोव, इंग्लैंड, लगभग 500,000 साल पहले की यह साइट कट और टक्कर के साथ हड्डियां प्राप्त करती थी निशान, ये दर्शाता है कि होमो अर्ली हिडिलबगेंसिस ने अस्थि मज्जा का सेवन किया था।
इन उदाहरणों से पता चलता है कि शुरुआती होमो सेपियंस और उनके पूर्वजों ने अस्थि मज्जा का सेवन किया था, जैसा कि प्रागैतिहासिक स्थलों पर पाए गए हड्डियों पर छोड़े गए संकेतों से पता चलता है। इस व्यवहार ने स्पष्ट रूप से मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जीवित रहने और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए। मानव मस्तिष्क कई लाख साल पहले आग के आविष्कार से पहले विकसित हुआ था। ये तर्कसंगत लगता है कि बड़े जानवरों की अस्थि मज्जा खाने से मनुष्य आसानी से खा सकता है बिना गर्म किए ऊर्जावान और आसानी से चबाया जाने वाला भोजन, लेकिन वे कारण और प्रभाव के बीच भ्रमित थे। उन्होंने अस्थि मज्जा खाया इसका कारण यह नहीं था कि यह पौष्टिक था, बल्कि इसलिए क्योंकि अन्य जानवरों को बड़ी हड्डियों को तोड़ने का अवसर नहीं मिला था और मनुष्य कार्य को पूरा करने के लिए उपकरण प्राप्त करने में सक्षम था। मनुष्य ने शवों की तलाश करने और फिर हड्डियों को तोड़ने और अस्थि मज्जा तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। मंगोल मांस और दूध पर रहते थे। मंगोलों ने भोजन को दो समूहों में वर्गीकृत किया। उलान आईडी मांस की तरह लाल खाद्य पदार्थ थे जो मुख्य रूप से सर्दियों और वसंत ऋतु में खाए जाते थे। असागान आईडी सफेद खाद्य पदार्थ थे जैसे कि डेयरी उत्पाद, जो मुख्य रूप से गर्मियों और शरद ऋतु में खाए जाते थे। सब्जियों को एक प्रकार की घास माना जाता था और उन्हें बकरी का भोजन कहा जाता था। मंगोलों को इस बात से बहुत घृणा थी कि किसान मिट्टी में उगने वाले और अक्सर मलमूत्र से सने पौधों को खाते हैं। आज मंगोलियाई लोगों की जीवन प्रत्याशा 70 जापानियों की तुलना में कम है, 80+। ये समझ में आता है कि यह आटा, शराब और धूम्रपान के कारण है जो मंगोलिया में बहुत आम है, और यह भी कि वे खाना नहीं खाते हैं, फल बिल्कुल नहीं, जब वो भूखा हो, और वो तब तक ना पिएगा जब तक कि उसे प्यास न लगे। अविश्वसनीय रूप से सटीक शरीर हमें अच्छी तरह से संकेत देना जानता है। 3B एक व्यक्ति तब तक नहीं खाएगा जब तक उसका पेट नहीं भर जाता, लेकिन कम से कम एक चौथाई पेट भर जाने के बराबर तो नहीं। और वो भोजन में जल न पिए, परंतु थोड़ा सा और दाख मधु मिला हुआ पिए, और जब भोजन उसकी आंतों में जाना शुरू हो जाता है तो वो वही पीता है जो उसे पीना चाहिए, और खाना खा लेने के बाद भी उसे ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और जब तक वो अपने आप को ठीक से जांच न ले तब तक न खाएगा, ऐसा ना हो कि उसे छेद ना पड़े। तुम्हें तब तक खाना है जब तक तुम्हें भूख न लगे। हर व्यक्ति की मात्रा अलग अलग होती है, महत्वपूर्ण यह है कि क्या खाया जाता है, कितना नहीं। वो भाग जहां ये सच है कि भोजन के साथ पीना अच्छा नहीं है, न तो पहले और न ही उसके बाद। कुछ अन्य गतिविधि। अंगूठे का नियम, उसका शरीर प्रतिक्रिया करेगा और वह हर सुबह तब तक छुएगा जब तक कि उसका शरीर गर्म महसूस न करने लगे, और जब तक उसका मन शांत न हो जाए वह थोड़ा आराम करेगा और वह खाएगा। और यदि वो पागल के पीछे शोरबा में नहाए तो अच्छा है, और फिर थोड़ा रुकता है और खाता है। ये सच नहीं है, ये तर्क और विज्ञान के बिना एक आकस्मिक कथन है। EC हमेशा के लिए, जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसे अपने स्थान पर बैठना चाहिए या बाईं ओर झुकना चाहिए, और वो तब तक न चलेगा, न सवारी करेगा, न छुएगा, न अपने शरीर को हिलाएगा, न तब तक चलेगा जब तक कि उसकी अंतड़ियों में भोजन न खा लिया जाए। और जो कोई भी अपने भोजन के पीछे यात्रा करता है या पागल है, आखिरकार यह अपने आप में बुरी और गंभीर बीमारियां लाता है। तर्क सच है, लेकिन मेरी राय में यह सटीक नहीं है और विज्ञान या टिप्पणियों पर आधारित नहीं है। और डी, दिन और रात 4:20। एक व्यक्ति के लिए 3 घंटे यानी 8 घंटे सोना काफी है, और वे रात के अंत में होंगे, ताकि उसकी नींद की शुरुआत से लेकर सूरज उगने तक 8 घंटे होंगे, और वो सूरज उगने से पहले अपने बिस्तर से खड़ा पाया जाएगा। अपेक्षाकृत सटीक। उम्र के साथ नींद के घंटे कम हो जाते हैं। जनजातियों में वे लगभग 7 घंटे हैं। 7E एक व्यक्ति को न तो अपने चेहरे के बल सोना चाहिए, न ही अपनी पीठ के बल, बल्कि अपनी करवट लेकर सोना चाहिए, रात की शुरुआत में बाईं ओर और रात के अंत में दाहिनी ओर रात, और वो खाने के करीब नहीं सोएगा, बल्कि खाने के बाद 3 या 4 घंटे तक इंतजार करेगा, और उसे दिन में नींद नहीं आएगी। ये सच नहीं है, घुटनों को ऊपर उठाकर पीठ के बल सोना पसंदीदा नींद है। इसी तरह से भारतीय सोते हैं। ये पीठ के साथ साथ FH और आंतों को रेचक करने वाली चीजों से सांस लेने में मदद करता है, जैसे कि अंगूर और अंजीर और स्ट्रॉबेरी और नाशपाती और तरबूज और तोरी की आंतों और खीरे की आंतों। एक व्यक्ति खाने से पहले उन्हें सबसे पहले खाता है और उन्हें भोजन के साथ नहीं मिलाएंगे, परंतु जब तक वे अपने पेट के ऊपरी हिस्से से बाहर नहीं आ जाते तब तक थोड़ा रुकेंगे, और उसका खाना खाओ। और जो चीजें आंतों को सहारा देती हैं, जैसे अनार और खुबानी और सेब और क्रॉस्टामलिन, मैं उन्हें तुरंत उसके भोजन के लिए खाऊंगा, और बहुत ज्यादा नहीं। कुछ फल हैं जिन्हें खाने की सलाह दी जाती है। कोई भी चीज जो दस्त का कारण बनती है, यह एक निश्चित संकेत है कि वह मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। 9-7 जब कोई व्यक्ति मुर्गे का मांस और जानवर का मांस दोनों खाना चाहता है तो वह पहले मुर्गे का मांस खाता है। अंडे और मुर्गे के मांस के साथ साथ मैं सबसे पहले अंडे खाता हूँ, पतले जानवर का मांस और मोटे जानवर का मांस मैं पहले पतला मांस खाता हूँ। एक व्यक्ति हमेशा हल्की चीज को पहले पसंद करेगा और भारी चीज को बाद में।
ये सच नहीं है, यह एक आविष्कार है। 1-8 गर्म दिनों में मैं ठंडा खाना खाता हूँ और मैं ज्यादा मसाला नहीं जोड़ता और मैं सिरका खाता हूँ, और बरसात के दिनों में मैं पका हुआ भोजन और ढेर सारा मसाला खाता हूँ और थोड़ी सी सरसों और हरा प्याज खाता हूँ।
और इस प्रकार वह ठंडे स्थानों और गर्म स्थानों में हर जगह और स्थान पर जैसा उसके लिए उपयुक्त है जाता और करता है।
11-9 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बेहद खराब हैं और यह एक के लिए उचित है, व्यक्ति को इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि पुरानी नमकीन बड़ी मछली और पुराना नमकीन पनीर और ट्रफल और मशरूम और पुराना नमकीन मांस और उसमें से शराब और एक स्टू जो उसकी गंध आने तक छोड़ दिया गया हो नष्ट हो गया है, और कोई भी भोजन जिसकी गंध बेहद खराब या कड़वी है, ये शरीर के लिए है मौत के जहर की तरह।
सच नहीं है, मछलियां खाने में बहुत अच्छी होती हैं, चाहे उनका आकार कुछ भी हो।
आमतौर पर मशरूम और नमक से परहेज करना बेहतर है।
12 और ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जो खराब हैं, लेकिन पहले खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की तरह नहीं, इसलिए मनुष्य के लिए उचित है कि वह उनमें से कुछ को छोड़कर और बहुत दिनों के बाद न खाए और अपने आप को उनसे पेट भरने की आदत न डाले या हमेशा अपने भोजन के साथ उन्हें खाने की आदत न डाले, जैसे बड़ी मछली, पनीर और दूध,
जिसका दूध 24 घंटे तक दुहा गया हो, और बड़े बैलों और बड़ी बूढ़ी बकरियों का मांस और सेम, मसूर और नीलमणि और जौ की रोटी, मर्जा की रोटी, गोभी, घास, प्याज, लहसुन, सरसों और मूली, ये सभी खराब खाद्य पदार्थ हैं।
आंशिक रूप से सच है।
सभी सब्जियां, फलियां, जड़े मनुष्यों के लिए जहरीली हैं। किण्वित बकरी का दूध हमारे लिए अच्छा है।
गाय का दूध अधिकांश लोगों के लिए बहुत समस्याजनक है।
13 बहुत कम और बरसात के दिनों को छोड़कर किसी व्यक्ति के लिए इसका सेवन करना उचित नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में वो उनमें से बिल्कुल भी नहीं खाएगा।
और अकेले सेम और दाल, इन्हें खाना उचित नहीं है, न तो गर्मी के दिनों में और न ही बरसात के दिनों में।
और डेलू, इन, हम गर्म दिनों में उनमें से थोड़ा खाते हैं।
हम जाता
यिड 10 और ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खराब हैं और इनके जैसे नहीं, और वे हैं जलपक्षी और छोटे कबूतर और खजूर और तेल में भुनी हुई रोटी या तेल में भीगी हुई रोटी और सूजी जो तब तक छानी गई हो जब तक कि उसमें से निवाले की गंध न रह जाए, और स्टॉक और मोराइस।
इन्हें अधिक मात्रा में खाना उचित नहीं है, और एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है और अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त करता है और अपनी वासना का पालन नहीं करेगा और उपरोक्त सभी में से कुछ भी नहीं खाएगा जब तक कि हमें दवा के लिए इसकी आवश्यकता न हो, आखिरकार यह एक नायक है।
आंशिक रूप से सच है।
जलपक्षी और कबूतर हमसे श्रेष्ठ हैं।
12-11
मनुष्य जंगली वृक्षों के फल से कभी अपने आप को वंचित न रखेगा और सूखा भी अधिक न खाएगा और गीला कहने की भी हमें आवश्यकता नहीं, लेकिन इससे पहले कि उनकी सारी जरूरतें पूरी हों, वे शरीर पर तलवार की तरह हमला करते हैं।
और कैरोब दुनिया के लिए बुरा है,
और चटनी के फल तो बुरे होते हैं, और गर्मी के दिनों में और चुम्बिन स्थानों में कोई उन्हें छोड़कर थोड़ा नहीं खाता।
और अंजीर, अंगूर और बादाम चाहे गीले हों चाहे सूखे सर्वदा अच्छे रहते हैं, और मनुष्य जितना चाहे उतना खा सकता है, लेकिन उन्हें खाना जारी नहीं रहेगा भले ही वे जंगली फलों से बेहतर हों।
आंशिक रूप से सच है।
बादाम वास्तव में हमारे लिए जहरीले हैं।
16-12 शहद और शराब युवाओं के लिए हानिकारक हैं और बूढ़ों के लिए अच्छे हैं, खासकर बरसात के दिनों में।
और एक व्यक्ति को गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में जितना खाता है उसका 2/3 खाना चाहिए। शहद हमारे लिए अच्छा है,
शराब हमारे लिए अच्छी नहीं है।
17-13 एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर अपनी आंतों को नर्म रखने की कोशिश करेगा और उसे थोड़ा दस्त भी होगा।
और चिकित्सा में यह एक महान नियम है कि जब तक दृष्टि टाली जाती है या कठिनाई से निकलती है तब तक बहुत से रोगी आते हैं।
सच से बहुत दूर
विपरीत,
वो शायद सब्जियों और ऐसी ही अन्य चीजों के कारण दस्त जैसी किसी चीज से पीड़ित हो गया था।
कठिन होना चाहिए,
विज्ञान इसका समर्थन करता है।
18 और अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो एक व्यक्ति अपने पेट से क्या छुटकारा पा सकता है। अगर वो एक लड़का होता तो वो सुबह बिना मुंह में तेल, मोराइस और नमक से भरी नमकीन रोटियां खाता, या फिर वो शलजम या पत्ता गोभी के छिलके का पानी तेल, नमक और मसालों के साथ पिएगा। और अगर वो बूढ़ा होता तो वो सुबह पानी में शहद मिलाकर पीता और लगभग 4 घंटे तक रुकता और फिर अपना खाना खाता।
यदि आवश्यक हो तो वह ऐसा दिन ब दिन 3 या 4 दिन तक करेगा जब तक कि उसका पेट न जल जाए।
वह जो सुलेमान अपनी बुद्धि में कहता है, अपने मुंह और अपनी जीभ की रक्षा करता है, अपनी आत्मा को संकट से बचाता है, नीतिवचन रात के 9:23, अर्थात वह अपने मुंह को खराब भोजन खाने या उपवास करने से बचाता है,
और अपनी जीभ को मुसीबत से बचाता है। अपनी जरूरतों को छोड़कर बोलना। अधिकांश बीमारियां उस भोजन से उत्पन्न होती हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है जिसे वे खाते हैं। यह सही भाग है। 21:16 स्नान करने की विधि कि एक व्यक्ति 7 दिन से लेकर 7 दिन तक स्नान में प्रवेश करता है और वह खाने के निकट प्रवेश नहीं करेगा और तब नहीं जब उसे भूख लगेगी परंतु जब भोजन पचने लगेगा और वह अपने पूरे शरीर को शोरबा से स्नान कराता है जिससे शरीर नहीं जलता है और केवल अपने सिर को शोरबा से स्नान कराता है जिससे शरीर जल जाता है और फिर वह अपने शरीर को फुशारिन से स्नान कराएगा और फिर फुशारिन से जब तक कि वह ठंड में स्नान न कर ले और वह बिल्कुल भी उसके सिर के ऊपर से न गुजरेगा न गुनगुना न ठंडा और वो ठंड में बरसात के दिनों में न नहाएगा और जब तक उसे पसीना न आ जाए और उसका सारा शरीर थक न जाए तब तक न नहाना और न स्नान में देर करना लेकिन जब उसे पसीना आएगा और उसका शरीर अकड़ जाएगा तो वह धुलकर बाहर आ जाएगा। आंशिक रूप से सच है। ठंडा स्नान हमारे लिए अच्छा है। विज्ञान और तर्क इसका समर्थन करते हैं। दिग्गजों के कंधों पर भोजन पहला तरीका जो मुझे बहुत तार्किक लगा वह एस्त गोहकेल का था जिन्होंने सही मुद्रा के बारे में भी लिखा था लेकिन उन्होंने इसे ये देखकर हल किया कि प्राचीन कैसे बैठते और खड़े होते थे और ये था ऐसा कुछ जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था लेकिन वह इस समाधान के लिए भी प्रतिभाशाली थे कि हमें क्या खाना चाहिए सामान्य तौर पर हमारे लिए क्या सही है ये देखना कि प्राचीन लोग क्या खाते थे और उनका व्यवहार और चाल चलन कैसा था। हर चीज की नकल करने के लिए नहीं बल्कि तर्क का उपयोग करना और जो हमारे लिए अच्छा है उसकी नकल करना। वो किताब जिसने मुझे समझाया कि गेहूं के साथ समस्या हो सकती है क्योंकि यह मुझे तर्कसंगत नहीं लगा कि केवल कुछ लोग ही ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील होते हैं वो डॉक्टर द्वारा लिखी गई बेली ऑफ व्हीट है। डोट विलियम डेविड। मैंने इसे ऑडिबल पर सुना और यह हिब्रू में भी उपलब्ध है। एक और किताब जो वसा और मांस के पीछे के विज्ञान को बताती है वह है द बिग ब्लफ ऑफ कोलेस्ट्रॉल। पुस्तक के माध्यम से हम समझते हैं कि वसा वास्तव में हमारे लिए अच्छा है जानवरों से न कि पौधों से और यह इस बात से जुड़ा है कि प्राचीन लोग क्या खाते थे। जब तर्क और विज्ञान और ऐतिहासिक अवलोकन के बीच कोई अंतर होता है तो दरार पड़ जाती है। और फिर जब मैं अरब दुनिया से अपने चचेरे भाई को इन किताबों के बारे में बताता हूँ उसने मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के एक हृदय सर्जन द्वारा लिखित द पैराडॉक्स ऑफ द प्लांट्स नामक एक अच्छी पुस्तक दी। यहाँ वास्तव में एक सफलता थी। गेंड्री ने कहा कि सभी प्रकार की जड़ों पत्तियों और सामान्य तौर पर पौधे की चीजों में सभी प्रकार के विषाक्त पदार्थ होते हैं इसलिए हम उन्हें नहीं खाते हैं। गेंड्री की गलती यह थी कि उन्होंने कहा था कि कुछ पौधों में ये समस्याग्रस्त तरीके से होता है लेकिन सच्चाई ये है कि सभी पौधों में ये होता है। वो वास्तव में एक पथ प्रदर्शक थे लेकिन पुस्तक की सिफारिश ये होनी चाहिए थी कि पके फलों को छोड़कर पौधों के भोजन से पूरी तरह परहेज किया जाए। खट्टापन भिगोना और अंकुरित करना जो एक परिवार के विषाक्त पदार्थों को काफी हद तक कम कर देता है उनमें से एक लैक्टिन है। यह आश्चर्यजनक था लेकिन जब मैंने विषाक्त पदार्थों पर शोध किया तो मुझे पता चला कि वो सही था। जब मैंने अपने मेनू से पौधों को हटा दिया तो थोड़ा परेशान करने वाला पेट दर्द हुआ मैं पूरी तरह से गायब हो गया था। पूफ वे चले गए। तब विज्ञान का एक अद्भुत संयोजन हुआ तर्क के साथ और स्वयं पर एक निजी प्रयोग के साथ मुफ्त आहार में दरार पड़ गई। उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही स्मार्ट डॉक्टर पॉल मेसन का व्याख्यान मिला जो मेरी तरह जो सही है उसके साथ चलते हैं वर्तमान के साथ नहीं। वह वैज्ञानिक तरीके से बताते हैं कि पौधों के विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। उनका तरीका मेरे से अलग है क्योंकि यह बिना किसी तर्क और विकास के केवल विज्ञान पर आधारित है। मैं सब कुछ जोड़ता हूँ भले ही मैं जैविक विज्ञान में कमजोर हूँ लेकिन मुझे पता है कि पॉल जैसे संतों को कैसे पहचानना है जिन्होंने यूचरिस्टिक विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया में। और हाँ ये चीजें महत्वपूर्ण हैं और बहुत कुछ कहती हैं। मैंने जो भी किताब पढ़ी है इंटरनेट से एक व्याख्यान सुना है उसमें आमतौर पर 70% सच और 30% झूठ होता है। जो सच है उसे लेने के लिए एक गंभीर निदान की आवश्यकता होती है प्रत्येक पुस्तक से और इस तरह मैंने मुफ्त पोषण को एक साथ रखा। भोजन के लिए एक अच्छा परीक्षण। खट्टा या मसालेदार? यदि उत्तर हाँ है तो यह एक मुफ्त भोजन है और मनुष्यों के लिए उपयुक्त है। बेशक इन्हें पकाकर खाना बेहतर है लेकिन ये सिर्फ ये जांचने के लिए है कि भोजन मनुष्यों के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य खाद्य पदार्थ न खाएं। ये सिर्फ एक उपकरण है जो स्पष्ट करता है कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है। मानव ने विकास के कई मिलियन वर्षों की तुलना में पिछले कुछ लाख वर्षों में आग का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यदि कोई निश्चित भोजन बिना पकाए या गर्म किए खाना संभव नहीं है तो इसका मतलब है कि यह हमारे आहार में हाल ही में शामिल हुआ है जैसे कि रोटी पौधे आदि। डोट सभी प्रकार के मांस को कच्चा खाया जा सकता है इसलिए वे मनुष्यों के लिए उपयुक्त हैं। पके फल कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए वे मनुष्यों के लिए उपयुक्त हैं।
मछली, खाने योग्य चलती मछली, इसलिए मनुष्यों के लिए उपयुक्त है।
अनाज, यह असंभव है इन्हें बिना पकाए या पकाए खाएं,
इसलिए मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है।
पत्तियां, कड़वी या खट्टी हैं, इसलिए मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है।
मेवे, कुछ हद तक कड़वे हैं, इसलिए मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है।
फलियां, बिना पकाए कठोर और कड़वी हैं और विषाक्त भी हैं, इसलिए मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है।
दूध, आप कर सकते हैं सीधे बकरी का दूध पिएं, इसलिए मनुष्यों के लिए उपयुक्त है।
गाय का दूध भी, लेकिन बहुत से लोग इसके प्रति संवेदनशील हैं क्योंकि यह उस दूध से भिन्न है जिसे वे हजारों वर्षों से पीते आ रहे हैं।
सब्जियां, उनमें से अधिकांश कड़वी या कच्ची मसालेदार हैं, जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं हैं।